आगे सबक देखिए भाई। किताबुस सरिका, अस्सरिकतु फिल लुगति अखदु शैई मिन अल गैरि अला सबीलिल खुफियति वल इस्तिसरार ومنه استراق السمع قال الله تعالى إلا من استرق السمع وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर एक खावन जो है अपनी औलाद का पहले इकरार कर ले और बाद में नफी करे तो फिर लियान होगा, अलबत्ता बच्चे का नसब साबित हो जाएगा क्योंकि खावन एक दफा इकरार कर चुका है। और अगर खावन ने पहले तो उस बच्चे के नसब का इनकार किया और फिर उसके बाद उसका इकरार किया तो इस सूरत में भी नसब साबित हो जाएगा, अलबत्ता इस सूरत में लियान नहीं होगा बल्कि खावंद को हद कजफ लगाई जाएगी। वजह यह कि लियान में खावंद और बीवी एक दूसरे को झुटलाते हैं, तो खावंद ने जब बच्चे की नफी की तो गोया उसने बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया, और फिर जब उसके बाद उसने बच्चे का इकरार किया तो उसका मतलब है कि इसने अपने आप को झूठा करार दे दिया। तो जब खावन ने अपने आप को झूठा करार दे दिया तो अब लियान नहीं हो सकता क्योंकि लियान में तो दोनों एक दूसरे को झूठा करार देते हैं और यहां पर खावन ने खुद अपने आप को झूठा करार दे दिया है। तो लिहाजा इस सूरत में खावन को हद कजफ लगेगी कि उसने बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है भाई। और अगर बीवी ने बच्चे को जन्म दिया और खावन ने कहा कि न ये मेरा बेटा है और न ये तेरा बेटा है, तो इस सूरत के अंदर हद और लियान नहीं आएगा क्योंकि ये तो बच्चे की पैदाइश का इनकार कर रहा है, कोई जिना का इल्जाम नहीं लगा रहा। और अगर एक औरत जो है उसने बच्चे की वजह से लियान किया था खावंद से और बच्चे का नसब काजी ने खावंद से काटकर औरत के साथ जोड़ दिया, या एक औरत की औलाद थी और उसके बाप का पता नहीं, इस किस्म की औरत पर अगर कोई शख्स जिना का इल्जाम लगाता है तो उसको हद नहीं लगाई जाएगी, इसलिए क्योंकि उस औरत के पास जिना की निशानी मौजूद है और वो ऐसी औलाद है जिसके बाप का इलम नहीं है। और अगर बच्चे के बगैर एक औरत ने लियान किया था और उस पर कोई जिना का इल्जाम लगाता है तो फिर उस इल्जाम लगाने वाले को हद कजफ लगाई जाएगी क्योंकि जिना की कोई निशानी यहां मौजूद नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि कोई शख्स अगर गैर मिल्क में वती कर ले तो ये जिना है, और इस किस्म के आदमी पर कोई इल्जाम लगाए जिना का तो उसको हद नहीं लगाई जाएगी। और फिर तफसील बयान की थी कि हराम वती दो किस्म पर है, एक हराम लिआइनी ही और एक हराम लिगैरी ही। हराम लिआइनी ही वो वती है जो अपनी जात के एतबार से ही हराम है, और हराम लिगैरी ही वो वती है जो अपनी जात के एतबार से हराम नहीं है बल्कि किसी और चीज की वजह से हराम है। और हराम लिआइनी ही वती की निशानियां बतलाई थी कि दो निशानियां हैं, एक तो ये कि वती गैर मिल्क में हो, ऐसी बांदी से वती की या ऐसी औरत से वती की जहां मिलके निकाह या मिलके यमीन मौजूद नहीं है, या मौजूद तो है लेकिन गैर की भी मिल्कियत है उस बांदी के अंदर, तो ये वती हुई गैर मिल्क में, तो ये भी हराम ले आईनी ही है। और इसी तरह अगर हुरमत मुअब्बद हो, हमेशा के लिए हुरमत हो, जैसे बांदी है लेकिन वो इसी आका की रिजाई बहन है, तो इसके साथ भी अगर वो वती करता है तो ये हराम ले आईनी ही है भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स हालत हैज में अपनी बीवी से सोहबत करता है, या कोई शख्स अपनी मजूसिया बांदी से सोहबत करता है, या कोई शख्स अपनी मुकातबा बांदी से सोहबत करता है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर ये वती हराम लिगैरी ही है भाई, क्योंकि वती मिल्क के अंदर है, अपनी मिल्कियत में है, अलबत्ता हराम है और हराम अपनी जात के एतबार से नहीं है, यानी हुरमत मुअब्बद नहीं है बल्कि मुअक्कत है, मालूम है ये हराम लिगैरी ही है ये वती। तो इस किस्म के आदमी पर अगर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उसको हद कजफ लगाई जाएगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको ये भी बतलाया कि अगर किसी मुकातब का इंतकाल हो गया है और वो अपने पीछे इतना माल छोड़कर मरा है जिसके जरिए बदले किताबत की पूरी अदायगी हो सकती है, तो इस गुलाम के अंदर सहाबा के जमाने से ही इख्तिलाफ है। बास सहाबा फरमाते कि ये आजाद मरा है और बास फरमाते कि ये गुलाम मरा है क्योंकि इसने अदायगी नहीं की थी। तो इस किस्म के गुलाम पर जो मुकातब था मर चुका है और पूरा बदले किताबत छोड़कर मरा है, इस पर अगर कोई जिना का इल्जाम लगाता है तो उसको हद कजफ नहीं लगाई जाएगी क्योंकि इस मुकातब के मोहसन होने में शुबा आ गया। भाई अगर ये आजाद मरा है फिर तो ये मोहसन है, अगर गैर आजाद है तो फिर ये मोहसन नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि एक मजूसी ने अपनी किसी महरम के साथ निकाह किया था, तो इमाम साहब के नजदीक उनके एतिकाद के मुताबिक ये निकाह सही है, लिहाजा इस निकाह को सही ही शुमार किया जाएगा, इल्ला ये कि ये मुसलमान हो जाएं या हमारे पास मसला लेकर आए तो फिर इनमें काजी जुदाई करवा देगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ये निकाह हुआ ही नहीं इसलिए क्योंकि ये जो जिम्मी है इन्होंने हमारे इत्तेफाकी मसाइल के मानने का इल्तिजाम किया है कि जो इजमाई और इत्तेफाकी मसाइल हैं उसको इन्होंने अपने ऊपर लाजिम करार दिया है, और महरम के साथ निकाह ये तो बिल इजमा हराम है, तो लिहाजा इस सूरत के अंदर ये निकाह हुआ ही नहीं। जब निकाह ही नहीं हुआ तो ये जिना हुआ, और जब जिना हुआ तो फिर अब इस सूरत के अंदर अगर इस किस्म के मजूसी पर जब ये मुसलमान हो जाए और कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उसको हद नहीं लगाई जाएगी साहिबैन के नजदीक, जबकि इमाम साहब के नजदीक इस काजिफ को हद कजफ लगाई जाएगी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जब किसी शख्स को हद कजफ लगा दी जाए तो उसके बाद फिर वो तमाम जिंदगी के लिए मरदूदु शहादत हो गया भाई, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फजलिदुहुम समानी न जल्दा वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, कि ये जिना का इल्जाम लगाने वाले अगर चार गवाह न लेकर आए तो इनको 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी भी इनकी गवाही कबूल न करो। मालूम हुआ गवाही का कबूल न करना ये हद का ततिम्मा है भाई, हद का ततिम्मा है। और अगर एक जिम्मी को ये हद कजफ लगाई गई थी, उसने किसी मुसलमान पर जिना का इल्जाम लगाया था और चार गवाह पेश न कर सका, उसको हद कजफ लगा दी गई तो ये भी मरदूदु शहादत हो गया। अब इस जिम्मी की गवाही जिम्मियों के खिलाफ भी कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर ये जिम्मी मुसलमान हो गया तो अब ये फिर अहले शहादत हो जाएगा और इसको नई शहादत हासिल हो गई क्योंकि अब ये मुसलमानों के खिलाफ भी गवाही दे सकता है और इसी के ताबे होकर जिम्मियों के खिलाफ भी गवाही का हक इसको मिल जाएगा भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई गुलाम है और उसको हद कजफ लगा दी गई और फिर उसके बाद उसको आजाद किया गया तो अब यह मरदूदु शहादत होगा। वजह यह कि यह जो मरदूदु शहादत होना है यह हद का ततीमा है और गुलाम की तो कोई शहादत ही नहीं होती, तो मालूम हुआ कि आजादी से पहले इसको सिर्फ कोड़े लगे हैं, अभी हद पूरी ही नहीं हुई। जब आजाद हो गया तो अब अहले शहादत हुआ और साथ ही मरदूदु शहादत वाला हुक्म भी आ गया, तो अब यह मरदूदु शहादत रहेगा, इसको कोई नई शहादत हासिल नहीं होगी भाई। और साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स जो है उसको हद कजफ लगाई गई और कुछ कोड़े जो हैं वो हालत कुफर में लगाए गए और फिर ये शख्स मुसलमान हो गया और बाकी कोड़े इस्लाम के अंदर लगे तो फिर इस सूरत के अंदर ये मरदूदु शहादत नहीं है, इसलिए क्योंकि मरदूदु शहादत ये हद का ततीमा है, इसके जरिए हद पूरी होती है और पूरी हद ना तो इसको कुफर के अंदर लगी है और ना इस्लाम के अंदर, लिहाजा ये ततीमा भी नहीं आ सकता भाई। इसकी ततीमे के आने के लिए जरूरी है कि पूरी की पूरी हद या हालत कुफर में लगे या पूरी की पूरी हद हालत इस्लाम में लगे भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर जुर्म एक ही जिंस का हो तो फिर वहां तदाखुल होगा हद के अंदर। मसलन एक आदमी ने कई आदमियों पर जिना का इल्जाम लगाया तो इस सूरत के अंदर तदाखुल होगा और एक ही हद कज़फ सबके लिए काफी हो जाएगी। एक आदमी ने कई दफा जिना किया तो तदाखुल होगा एक ही हद सबके लिए काफी हो गई। एक ही आदमी ने कई मरतबा शराब पी तो तदाखुल होगा एक ही हद शुर्ब सबके लिए हो जाएगी। ये एक ही आदमी ने कई दफा चोरी की तो तदाखुल होगा और एक ही दफा हाथ का काटना सबके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन अगर जुर्म की जिंस अलग अलग हुई, मसलन उसने जिना भी किया है और शराब भी पी है, तो इनकी तो जिंस ही अलग अलग है, तो लिहाजा हर जिंस के लिए अलग हद उसको लगाई जाएगी। और मैंने बतलाया था कि हर हद का मकसद अलग अलग है। जैसे चोरी की हद इसलिए है ताकि लोगों का माल महफूज हो, हद कजफ इसलिए है ताकि लोगों की इज्जतें महफूज हों, और इसी तरह जिना की हद इसलिए है ताकि लोगों के नसब महफूज हों, और शुरब खमर की हद इसलिए है ताकि लोगों की अकलें महफूज हों। भाई तो हर हद का मकसद अलग अलग है भाई, लिहाजा आपस में इनमें तदाखुल नहीं होगा। जबकि इमाम शाफिई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि अगर कजफ के मसले में अगर मकजूफ अलग अलग हुए या मकजूफ भी यानी जिना के इल्जाम अलग अलग हुए, यानी एक मरतबा एक औरत के साथ जिना का इल्जाम लगाया, दूसरी मरतबा दूसरी औरत के साथ जिना का इल्जाम लगाया, तो इस सूरत में तदाखुल नहीं होगा। और अगर मकजूफ भी एक है और जिना का इल्जाम भी एक ही है और उसी का तकरार उसने कई दफा किया है तो फिर यहां तदाखुल हो जाएगा और एक ही हद काफी होगी। भाई बात समझ में आ गई। और उसके बाद हमने ताजीर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बतलाया था कि इस्लामी सजाएं दो किस्म पर हैं, कुछ को हुदूद कहते हैं और कुछ को ताजीर। भाई हुदूद वो सजाएं हैं जो अल्लाह की तरफ से मुकरर हैं और ये इंतहा दर्जे की सख्त सजाएं हैं, इसलिए ये अदना शुबे से भी साकित हो जाती हैं। जबकि ताजीर वो सजा है जो काजी अपनी राय और अपनी मर्जी से देता है, तो इसके अंदर अगर शुबा भी आ जाए तो फिर भी ताजीर जारी की जा सकती है। भाई पहले तो यह बयान किया कि अगर कोई मोहसन पर जिना का इल्जाम लगाए तो उसको हद कजफ लगाएंगे, अगर गैर मोहसन पर कोई जिना का इल्जाम लगाए, मसलन किसी काफिर पर जिना का इल्जाम लगा दिया या किसी गुलाम या बांदी पर जिना का इल्जाम लगा दिया और वो काजी के पास आ गए, तो फिर यहां हद तो नहीं आएगी, क्योंकि मकजूफ जो है वो मोहसन नहीं है, वो आजाद या मुसलमान नहीं है, तो फिर इस सूरत में ताजीर आएगी। भाई और ताजीर के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा ताजीर जो है वो तरफेन रहिमहुमल्ला के नजदीक वो 39 कोड़े हो सकते हैं, यानी एक कम 40 भाई, और जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ताजीर ज्यादा से ज्यादा जो है 75 कोड़ों तक दी जा सकती है, और एक रिवायत के मुताबिक 79 यानी एक कम 80 कोड़ों तक ताजीर की जा सकती है। भाई तो लिहाजा अगर जुर्म छोटा हो तो ताजीर भी कम होगी, और अगर जुर्म बड़ा होगा तो ताजीर भी ज्यादा होगी। भाई और अगर किसी मुसलमान पर किसी शख्स ने गैर जिना का इल्जाम लगाया, मोहसन को यूं कहो, और अगर किसी मोहसन पर गैर जिना का इल्जाम लगाया, जिना के अलावा कोई और इल्जाम लगाया, यानी उसको फासिक कहा या उसको सारिक यानी चोर कहा या काफिर कहा मुसलमान को, तो फिर इस सूरत के अंदर ताजीर आएगी। भाई इसमें ताजीर आएगी। भाई और अगर किसी ने किसी को या खिमार यानी ए गधे या खिंजीर कहा तो इस सूरत के अंदर ताजीर नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि यहां पर वो कोई उसको ऐब नहीं लगा रहा। सब लोग जानते हैं कि ये इंसान है, ये खिमार या खिंजीर नहीं है। भाई और जबकि बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि उसको ताजीर की जाएगी, वजह यह कि इसको गाली शुमार किया जाता है, और फिर बाज़ फुकहा ने दोनों कौलों में तत्बीक दी कि अगर वो शख्स जिसको ये अल्फाज कहे गए हैं या खिमार या खिंजीर वगैरह जैसे अल्फाज कहे गए हैं, तो अगर वो शख्स बड़े खानदान वाला हुआ या आलिम है तो फिर इस सूरत के अंदर ताजीर होगी, इसलिए क्योंकि इनको गाली दी जाए तो ये इनके लिए वहशत का सबब है, गम और तकलीफ का सबब है। और जबकि आम आदमी को अगर उसने इस तरह के अल्फाज कहे हैं तो वहां ताजीर नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आम लोग तो गालियों की परवाह भी नहीं करते भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि साहिब कुदूरी ने फरमाया है कि कम से कम ताजीर जो है वो 3 कोड़े हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि इससे कम कोड़े लगाए जाएंगे तो इससे दूसरे की इसलाह नहीं होगी और उसको जजर नहीं होगा। लेकिन आम फुकाहा फरमाते हैं कि ताजीर की कम से कम मिकदार की कोई हद नहीं है, काजी चाहे तो सिर्फ किसी की तरफ गुस्से से देख ले ये भी काफी है बतौर ताजीर के, या सिर्फ काजी उसको डांट दे, या सिर्फ उसका कान मरोड़ दे, या उसको 3 से भी कम कोड़े लगाए भाई, ये काजी की मर्जी और सवाबदीद पर है भाई। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि अगर कोई जुर्म ऐसा है कि लोग उससे बाज ही नहीं आ रहे, मसलन मिलावट का जुर्म है और वहां काजी चंद कोड़ों की सजा देता है और लोगों पर असर ही नहीं हो रहा, तो फिर वहां काजी सजाए मौत भी दे सकता है कि 2-4 को सजाए मौत दे दे तो फिर पूरे इलाके वाले जो हैं वो मिलावट से बाज आ जाएंगे। और नीज ताजीर के साथ काजी कैद की सजा भी दे सकता है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि सबसे सख्त जरबें ताजीर में लगाई जाएंगी, इसलिए क्योंकि ताजीर के अंदर जरबों की तादाद कम है तो लिहाजा अब वसफ के अंदर तख़फीफ नहीं की जाएगी भाई। और उसके बाद दूसरा दर्जा जो है हद जिना का है, यानी दूसरे दर्जे की सख्त जरबें जो हैं वो हद जिना में लगाई जाएंगी, और तीसरे दर्जे की सख्त जरबें जो हैं वो हद शुर्ब में लगाई जाएंगी, और चौथे दर्जे में यानी सबसे हल्की जरबें जो हैं हद कजफ में लगाई जाएंगी। वजह यह कि हद कजफ का जो सबब है वो यकीनी नहीं, और सबब क्या है कि उस आदमी ने जिना का इल्जाम लगाया है तो हो सकता है वो आदमी सच्चा हो भाई, मकजूफ ने वाकई जिना किया हो लेकिन काजिफ के पास कोई गवाह मौजूद ना हो, तो लिहाजा वहां चूंकि हद कजफ का सबब यकीनी नहीं लिहाजा वहां जरबें जरा हल्की लगाई जाएंगी भाई। और आखिर में साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया कि अगर काजी किसी को ताजीर दे या किसी पर हद जारी करवाए और वो मुजरिम हलाक हो जाए तो उस सूरत में उसका यह खून रायगा है यानी जाया है, न इसकी वजह से किसास आएगा और ना दियत आएगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ताजीर के अंदर अगर मुजरिम हलाक हो गया तो फिर इस सूरत में दियत वाजिब होगी और वो बैतुल माल से अदा की जाएगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबुस सरिका अस्सरिकतु फिल लुगति अख्ज़ु शैई मिनल गैरी अला सबीलिल खुफियति वल इस्तिसरार। आज हम किताबु सरिका पढ़ेंगे भाई। सरिका का माना है चोरी भाई, खुफिया तौर पर पोशीदा तौर पर किसी का माल ले लेना यह है चोरी भाई। आप जानते हैं कि चोरी की हद यह है कि चोरी करने वाले मर्द या औरत का दायां हाथ काट दिया जाता है और फिर अगर वो दोबारा चोरी करे तो फिर उसका बायां पांव काट दिया जाता है, यानी दूसरी जानिब का पांव काट दिया जाता है भाई। और अगर फिर यही चोर तीसरी मर्तबा चोरी के अंदर पकड़ा जाए तो अब इसका हाथ या पांव नहीं काटेंगे क्योंकि इसका एक हाथ और पांव पहले ही कट चुका है। अब अगर हम इसका दूसरा हाथ भी काट देंगे तो चीजों को पकड़ने का जिनसे फायदा ही इस बेचारे का खत्म हो जाएगा, या अगर हम इसका दूसरा पांव काट देंगे तो इसका चलने का जिनसे नफा ही खत्म हो जाएगा। तो इंदल अहनाफ चोर का पहले दाया हाथ काटा जाता है और अगर फिर चोरी करे तो बायां पांव काटा जाता है, और अगर फिर उसके बाद चोरी करे तो फिर हाथ या पांव नहीं काटेंगे बल्कि उसको जेल में डाल देंगे यहां तक कि फिर वो तौबा कर ले या जेल के अंदर ही वो मर जाए। तो कहते हैं किताब उस सरिका, ये किताब उस सरिका है। अस सरिका तो फिल लुगति अख्ज़ु शैई मिनल गैरी अला सबीलिल खुफियति वल इस्तिसरार। सबसे पहले साहिब हिदायत सरिका की लुगवी तारीफ बयान फरमा रहे हैं कि अरबी जुबान में सरिका किसे कहते हैं भाई। तो फरमाते हैं अस सरिका तो फिल लुगति अख्ज़ु शैई मिनल गैरी अला सबीलिल खुफियति वल इस्तिसरारी। याद रखो, खफिया यखफा खुफियातन व खिफियातन, खा के जम्मा और कसरा दोनों के साथ ये मस्तर आता है, खुफियातन और खिफियातन। इसका माना है पोशीदा होना, गायब होना, और इस्तिसरार का माना भी है छुपना और पोशीदा होना। भाई तो कहते हैं अस्सरिकतु फिल लुगती, चोरी जो है अरबी जुबान के अंदर, अखजुशी मिनल गैरी, वो गैर से कोई चीज लेना, अला सबीलिल खुफियती वल इस्तिसरारी, पोशीदा और राजदारी के तरीके पर, राजदारी के तरीके पर किसी की चीज लेना। तो खुफिया और इस्तिसरार का एक ही माना है भाई। तो अरबी जुबान में चोरी इसे कहते हैं कि किसी दूसरे की कोई चीज ले ली जाए छुपा कर। वमीन हुस्तेराकुस समई, और इसी से इस्तेराकुस समा भी है। याद रखो अरबी जुबान में अगर कोई शख्स छुपा कर किसी की बात सुने तो इसको कहते हैं इस तरह का समा, इस तरह का समा, उसने चुपके से बात सुनी, उसने छुपा कर बात सुनी, या इसी तरह कोई छुप कर किसी की तरफ देखे तो इसको कहते हैं इस तारा का नजारा, इसने चुपके से देखा। तो कहते हैं वमीन हुस्तेराकुस समई, और इसी से इस्तेराकुस समा भी है, यानी चुपके से सुनना, पोशीदा तौर पर सुनना। قال الله تعالى, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इल्ला मन इस्तरकस समा, मगर जो चुपके से सुनने की कोशिश करता है। भाई आप पढ़ चुके हैं कि जिन्नात जो हैं इनका दाखिला तो आसमानों पर बंद था, लेकिन ये आसमान के करीब चले जाते और वहां चुपके से बैठ जाते और फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते थे कि पता चले अल्लाह ताला ने कौन सा नया हुक्म नाजिल फरमाया है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना करीब आया तो जिन्नात के इस तरह बातें सुनने पर पाबंदी लगा दी गई। अब अगर कोई जिन इस तरह बातें सुनने की कोशिश करता तो उसके पीछे एक भड़कता हुआ आग का शोला लपकता और उनको जला देता या उनको भागने पर मजबूर कर देता था। तो जिन्नात इस कैफियत पर परेशान हुए कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, मालूम हुआ कोई खास वाकया पेश आने वाला है। तो चुनांचे वो सूरतुल जिन के अंदर फिर तफसील आती है कि जिन्नात की जमातें पूरी दुनिया में फैल गई कि इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ से वापस तशरीफ ला रहे थे और एक मकाम पर फजर की जमात करवा रहे थे, चंद सहाबा हमरा थे, तो और वहां जिन्नात ने फिर कुरान सुना और वो ईमान ले आए। तो ये उसी बात की तरफ इशारा है। यहां पर अल्लाह फरमा रहे हैं इल्ला मन इस्तरका समा, मगर जो कोई चुपके से सुनने की कोशिश करता है, जो कोई चुपके से सुनने की कोशिश करता है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं फअत बाहु शिहाबु मुबीन, तो एक रोशन शोला जो है उसका पीछा करता है। तो साहिब हिदायत बतलाना यह चाहते हैं कि सरिका चोरी को कहते हैं और इसी से इस्तेराकुस समा भी है, इसका माना भी है चोरी छुपे किसी की बात सुनना। भाई आगे देखिए तो कहते हैं वक़त ज़ीदत अलैही औसाफ उन फी शरीयती, और तहकीक इस पर कुछ औसाफ बढ़ा दिए गए शरीयत के अंदर। भाई अरबी जुबान में तो चोरी इसे कहते थे कि कोई शख्स खुफिया तौर पर दूसरे की चीज ले ले, लेकिन शरीयत ने इसके अंदर कई कैदें बढ़ा दी, भाई कई औसाफ बढ़ा दिए। ये मेरे हाशिए में तारीफ दी हुई है, ये जरा देख लीजिए भाई, ये जीदत अलैही औसाफ उन पर हाशिया है। भाई कहते हैं हिया अय्युकाला अस्सरिकतु अख्ज़ु मालिल गैरी, कि चोरी जो है वो गैर का माल लेना है, अला सबीलिल खुफियती, खुफिया तरीके पर, निसाबन, और वो माल भी कितना होना चाहिए, निसाब के बकदर होना चाहिए। याद रखो आपको आगे चलकर साहिब हिदायत बतलाएंगे कि कम अज कम 10 दिरहम की चोरी हो तो फिर हाथ काटा जाएगा, 10 दिरहम से कम की चीज अगर किसी ने चोरी की है तो फिर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो यह माना है दूसरे का माल लेना अला सबीलिल खुफियती, खुफिया तौर पर, निसाबन, कि वो माल निसाब के बकदर हो, मुहरजन लितमवली, और नीज उसको महफूज किया गया हो, लितमवली मालदारी के लिए, यानी माले महफूज हो उसकी चोरी पर हाथ काटा जाता है। अगर माल गैर महफूज है, मसलन एक आदमी ने रास्ते में कोई चीज रखी थी और वहां से कोई उठाकर ले गया, तो देखो ये माल महफूज नहीं था, लिहाजा इसमें हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। तो माल निसाब के बकदर होना चाहिए और माल महफूज होना चाहिए। तो कहते हैं मुहरजन लिता मऊली, और उस माल को महफूज किया गया हो मालदारी के लिए, गैर मुतसारिइन इलैहिल फसादु, और नीज उसकी तरफ फसाद भी जल्दी ना आता हो, यानी कोई ऐसी चीज ना हो जो जल्दी खराब होने वाली हो, जैसे फल और सब्जियां हैं, ये आम ताजा फल और सब्जियां जो हैं, ये इनको अगर आप रखें भी तो ये तो दो चार दिन छह दिन के अंदर खराब हो जाते हैं भाई। तो लिहाजा अगर किसी शख्स ने किसी के ताजा फल चोरी किए या सब्जियां चोरी की, तो इसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे उनकी कीमत 10 दिरहम से ज्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ उसी माल की चोरी में हाथ काटा जाता है जो जल्दी खराब ना होने वाला हो। तो कहते हैं गैर मुतसारिइन इलैहिल फसाद, और उसकी तरफ फसाद जल्दी आने वाला ना हो, मिन गैरी तावीलिन वला शुभतिन, और उसके अंदर कोई तावील भी ना हो और कोई शुभा भी ना हो, यानी उसमें कोई तावील भी ना होती हो और शुभा भी ना हो, तावील ना हो, मसलन एक आदमी ने दूसरे का एक बड़ा ही कीमती ढोल चोरी कर लिया, अब वो ढोल की कीमत तो 10 दिरहम से ज्यादा है और उसने महफूज जगह से उठाया है, उसने हिफाजत से रखा हुआ था, तो इसके अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा। वजह यह कि वो ले जाने वाला शख्स जो ढोल को चुरा कर ले गया है, वो इसमें तावील कर सकता है कि मैं तो इसलिए लेकर गया था कि ये तो गुनाह का आला है, मैं इसको तोड़ना चाहता था, तो लिहाजा वो माल जिसको चोरी किया गया हो वो निसाब के बकदर होना चाहिए, महफूज होना चाहिए, और नीज वो जल्दी खराब होने वाला ना हो, और नीज उसके अंदर कोई तावील भी न की जा सके, और नीज उस माल के अंदर किसी किस्म का शुबा भी ना हो भाई। मसलन एक आदमी एक ऐसे माल को चोरी करता है जिसके अंदर खुद उसका अपना हिस्सा भी है, मसलन माले गनीमत में से चोरी कर लेता है एक आदमी, अब ये माले गनीमत ये तो आम मुसलमानों का माल है और ये आदमी भी मुसलमानों में से है, तो इसका भी इस माल के अंदर हक है, तो लिहाजा कोई शख्स माले गनीमत से चोरी कर ले तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि यहां शुबा आ गया, क्योंकि इसका हिस्सा भी इस माल के अंदर था भाई। या इसी तरह एक महरम दूसरे महरम से कोई चीज चुरा लेता है तो फिर वहां पर भी उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि महरम एक दूसरे के पास बेतकल्लुफी से आते जाते हैं, तो वहां हिफाजत के अंदर शुबा आ गया, उसके हक में वो माल पूरी तरह महफूज न था, महरम तो घर में आता जाता है, तो यहां पर हिफाजत कामिल नहीं, हिफाजत के अंदर शुबा आ गया, माल पूरी तरह महफूज न रहा उसके हक में, तो हाथ नहीं काटा जाएगा। तो मालूम हुआ चोरी किसे कहते हैं कि खुफिया तौर पर किसी का ऐसा माल ले लेना जो निसाब के बकदर हो, यानी 10 दिरहम या इससे ज्यादा हो भाई, और नीज वो माल महफूज हो, उसने हिफाजत के साथ रखा हुआ हो, और नीज वो जल्दी खराब होने वाला ना हो, और उसके अंदर कोई तावील ना की जा सकती हो भाई, और नीज उसके अंदर किसी किस्म का शुबा भी ना हो भाई। बात समझ में आ गई, तो यह सरीका की तारीफ है भाई। अब आइए किताब पर, कहते हैं वक़द ज़ीदत अलैही औसाफ़ उन फी शरीयती, और तहकीक इस पर कुछ औसाफ को बढ़ा दिया गया शरीयत में। भाई अरबी जुबान में तो चोरी किसे कहते हैं, खुफिया तौर पर किसी का माल ले लेना, लेकिन शरीयत ने इसके अंदर निसाब की भी शर्त लगा दी कि कम से कम 10 दिरहम हो, माल महफूज होने की भी शर्त लगा दी, और जल्दी खराब ना होने वाला हो यह शर्त भी लगा दी, और इसी तरह उसमें किसी किस्म की तावील ना हो सके ये शर्त भी लगा दी, और नीज उस माल के अंदर किसी किस्म का शुबा भी ना हो, ये कई शर्तें बढ़ा दी शरीयत ने। ये माना है वक़द ज़ीदत अलैही औसाफ़ उन फी शरीयती, और तहकीक कई औसाफ को बढ़ा दिया गया इस पर शरीयत के अंदर, अला मा याती का बयानहु इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से कि इसका बयान आपके पास इंशा अल्लाह ताला आ जाएगा। आगे साहिब हिदाया एक एक चीज को तफसील से बयान फरमाएंगे भाई। वल माना लुगवी यू मुरा अन फी हब्तिदा अवन तिहा अन, अरबी जुबान में चोरी कहते हैं खुफिया तौर पर किसी का माल लेना, और जो शरई माना था उसके अंदर भी खुफिया तौर पर लेने का माना मलहूज है, शरई और इस्तिलाही मानी के अंदर भी लुगवी माना की रियायत रखी जाती है। और अरबी जुबान में चोरी किसे कहते थे? खुफिया तौर पर लेना। तो यही माना सरीका के अंदर जो इस्तिलाही तारीफ है उसके अंदर भी खुफिया तौर पर लेने की रियायत रखी गई है। तो खुफिया तौर पर होना यह दो तरह हो सकता है, एक तो है इब्तिदाअन भी खुफिया हो, इंतहाअन भी खुफिया हो, और एक सूरत यह है सिर्फ इब्तिदाअन खुफिया है, इंतहाअन खुफिया नहीं। तवज्जो है, शरीयत ने जिस फेल को चोरी करार दिया उसके अंदर भी पोशीदा होने का माना मलहूज है, यानी लुगवी माना मलहूज है। लुगवी माना क्या था? पोशीदा तौर पर चीज लेना। और शरीयत ने जो चोरी की तारीफ की उसमें भी पोशीदा होने का माना है भाई। तो इसमें इब्तिदाअन और इंतहाअन दोनों तरफ से, दोनों एतबार से पोशीदा होगा। मसलन रात के वक्त चोर आया, आकर सामान उठाया और खामोशी से चला गया जी। अब देखो इब्तिदा के एतबार से भी यह फेल खुफिया है और इंतहा यानी जब निकला घर से उस एतबार से भी खुफिया ही है, खुफिया ही आया और खुफिया ही निकल गया। और एक सूरत यह है कि आए तो खुफिया तौर पर लेकिन फिर घर के अंदर तलवार वगैरह या बंदूक उसके पास है और फिर घर के मालिक से जबरदस्ती उसके सामने सामान उठा कर ले जाता है। तो यहां इब्तिदाअन तो यह अमल उसका खुफिया था अगरचे इंतहाअन खुफिया नहीं। तो बतलाना यह चाहते हैं कि शरीयत के अंदर जिसको चोरी कहा जाता है उसके अंदर भी पोशीदा होने के माना की रियायत है। अगर पोशीदा तौर पर नहीं तो वह चोरी ही नहीं है जी। अगर पोशीदा तौर पर नहीं तो वह चोरी ही नहीं। लिहाजा अगर एक आदमी तलवार उठाकर इब्तिदा से ही तलवार लेकर आया तो आया भी तलवार लेकर खुले आम और फिर सामान भी खुले आम लेकर गया जैसे डाकू आजकल करते हैं, तो इसको चोरी नहीं कहेंगे, इसको डाका तो कहेंगे लेकिन चोरी नहीं कहेंगे। चोरी के अंदर उसका खुफिया होना जरूरी है, चाहे इब्तिदान और इंतहान दोनों जगह खुफिया हो या चाहे सिर्फ इब्तिदान खुफिया हो भाई। तो कहते हैं वल माना लुगवी मुराअन फीहा, और लुगवी माना जो है उसकी रियायत रखी गई है इस शरई माना के अंदर, इब्तिदा अव वंतहा अन, इब्तिदा और इंतहा के एतबार से, अव इब्तिदा अन ला गैरु, या सिर्फ इब्तिदा के एतबार से जी। या सिर्फ इब्तिदा के एतबार से। अच्छा भाई, चोरी कोई शख्स करे, इब्तिदाअन भी खुफिया हो इंतहाअन भी खुफिया हो, यह बात तो जाहिर थी जी। चोर खुफिया तौर पर आता है और खुफिया तौर पर ही माल लेकर चला जाता है, लेकिन इब्तिदाअन खुफिया हो और इंतहाअन खुफिया ना हो यह बात वाजह नहीं थी। तो साहिब हिदाया अब उसकी वजाहत करेंगे कि जैसे चोर आया तो पोशीदा तौर पर लेकिन तलवार और बंदूक साथ ही और मालिक के सामने जबरदस्ती उसका माल उठाकर चला गया। तो कहते हैं अव इब्तिदा अन ला गैरु, या जो है इब्तिदा के एतबार से न कि इसके अलावा, कमा इदा नकबल जिदारा अलस तेसरारी, जैसे किसी शख्स ने नकब लगाई दीवार में, अलस तेसरारी छुप कर, अलस तेसरारी राजदारी से छुप कर दीवार में नकब लगाई। नकब लगाने का माना है दीवार में सुराख करना भाई। कदीम जमाने के अंदर चोरों के पास ऐसे आलात होते थे कि वो इन दीवारों के अंदर बड़े इत्मीनान से सुराख कर देते थे और फिर वहां से घर के अंदर दाखिल होते और सामान लेकर निकल जाते थे भाई। तो कहते हैं कमा इदा नकबल जिदार अलस तेसरारी, जैसे कि किसी शख्स ने दीवार के अंदर सुराख किया, अलस तेसरारी छुप कर, व अखजल माल अमीनल मालिकी, और माल मालिक से ले लिया, मुकाबरतन, मुकाबरा कहते हैं सीना जोरी भाई, जबरदस्ती, और मालिक से माल ले लिया सीना जोरी करते हुए, अलल जिहारी, जिहार और जहार, जीम पर फथा भी जायज और कसरा भी भाई, अलल जिहारी यानी खुले तौर पर, अलल एलान जो है मालिक से माल ले लिया सीना जोरी करते हुए। फिर तर्जमा देख लीजिए भाई, ये वो सूरत है, आया तो खुफिया तौर पर लेकिन सामान लेकर गया सीना जोरी करते हुए। कमा इदा नकबल जिदारा अलस तेसरारी, जैसे कि दीवार के अंदर सुराख किया, अलस तेसरारी राजदारी के साथ पोशीदा तौर पर, व अखजल माल मिनल मालिक मुकाबरतन अलल जिहारी, और मालिक से माल ले लिया सीना जोरी करते हुए, अलल एलान यानी खुले तौर पर, व फिल कुबरा अनी कत अत तरीकी मुसारकत आइनिल इमाम, वफील कुबरा, यहां से साहिब हिदायत के एतराज का जवाब दे रहे हैं। लेकिन पहले ये समझ लें भाई, याद रखो ये जो सरिका है ये दो किस्म पर है भाई, एक सरिका सुगरा यानी छोटी चोरी और एक है सरिका कुबरा यानी बड़ी चोरी। और बड़ी चोरी जो है वो डाके को कहते हैं, बड़ी चोरी को अरबी में कतए तरीक कहते हैं, यानी डाका डालना, कतए तरीक यानी डाका डालना। ये जो डाका डाला जाता है ये भी चोरी ही है भाई, अलबत्ता ये सरिका कुबरा है। ये जो पहले हमने जिक्र किया कि चोर छुप कर आता है और सामान उठाकर ले जाता है, या छुप कर आता है लेकिन फिर मालिक से जबरदस्ती सामान ले जाता है, यह है सरिका सुगरा। और एक है सरिका कुबरा भाई, और उसको अरबी में कतए तरीक कहते हैं। लेकिन उर्दू में इसके लिए कोई खास अलग लफ्ज नहीं है भाई। उर्दू के अंदर तो आप जानते हैं शहर के अंदर भी कोई अगर असलहे के जोर पर घर में दाखिल हो और माल लूट कर चले जाएं तो इसको डाका कहा जाता है, इसको डाका कहा जाता है। लेकिन अरबी जुबान में कतए तरीक जो है वो खास डाके का नाम है। देखो लफ्जों पर गौर कर लें, कतउत तरीक भाई, कता का माना काटना और अतरीक का माना रास्ता, कतउत तरीक रास्ते को काटना। कदीम जमाने में आप जानते हैं कि काफिलों की सूरत में लोग सफर करते थे और सामान्य तिजारत भी काफिलों की सूरत में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता था भाई। तो बाज औकात रास्ते में जंगलों के अंदर डाकू आ जाते और उस सारे काफिले को लूट लेते, ये है कतए तरीक भाई। और देखो यहां पर कोई मदद को नहीं आ सकता, कतए तरीक के अंदर कोई मददगार नहीं पहुंच सकता। जबकि शहरों के अंदर आप जानते हैं अगर कोई डाका डालता भी है तो फौरी तौर पर वहां से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी मालूम है लोग मदद के लिए पहुंच सकते हैं भाई। तो शहरों के अंदर जो डाका डाला जाता है उर्दू में तो उसको भी डाका कहते हैं, और जो किसी जगह रास्ते के अंदर डाका डाला जाए उसे भी डाका कहा जाता है। लेकिन अरबी में जो रास्तों के अंदर डाका डाला जाए उसको कतए तरीक कहते हैं। तो कतए तरीक के अंदर भाई कोई मदद को नहीं पहुंच सकता, वो बड़ी तसल्ली से सारा सामान भी लूटते हैं और कत्ल करना चाहे तो कत्ल भी करते हैं भाई। तो लिहाजा ये जो कतए तरीक है ये सरिका कुबरा है, ये बड़ी चोरी है और इसकी सजा भी बड़ी सख्त है। इसके अंदर दायां हाथ भी काटा जाएगा डाकू का और बायां पांव भी काटा जाएगा, एक जानिब का हाथ और एक जानिब का पांव काटा जाएगा भाई, ताकि ये सब के लिए इबरत का निशान हो और किसी को इस तरह दोबारा डाका डालने की जरूरत और हिम्मत न हो भाई। तो ये है कतए तरीक भाई, रास्ता काटना। बात समझ में आ गई? तो उर्दू में इसके लिए कोई अलग लफ्ज नहीं है भाई। जैसे अभी साहिब हिदायत ने मिसाल जिक्र की कि चोर रात को खुफिया तौर पर घर के अंदर आए और फिर अलबत्ता सीना जोरी से सामान ले गए, उर्दू में इसको चोरी कहते ही नहीं, उर्दू में तो इसको भी डाका कहते हैं। खुफिया तौर पर डाकू घर में आ गए और फिर असलहे के जोर पर सामान लूट कर ले गए, तो उर्दू में इसको चोरी नहीं कहते, डाका कहा जाता है। तवज्जो है, लेकिन इस्तेलाह है शरीयत में ये भी चोरी ही है, क्योंकि डाकुओं का आना जो था वो खुफिया तौर पर था भाई। तो यहां तक बात समझ में आ गई, कतए तरीक ये भी क्या है, सरिका कुबरा है। तो यहां इश्काल होता है कि ऐ साहिब हिदाया, आपने हमें बताया कि शरई माना के अंदर भी लुगवी माना मलहूज है, और लुगवी माना तो सरिका का था, खुफिया तौर पर दूसरे की चीज ले लेना, और सरिका सुगरा के अंदर तो यह माना मलहूज है, खुफिया तौर पर दूसरे का माल लिया जाता है, चाहे इब्तिदा और इंतहा दोनों के एतबार से खुफिया हो या सिर्फ इब्तिदा के एतबार से खुफिया हो। लेकिन ये जो कतए तरीक है ये तो डाकू रास्ते के अंदर खुले आम काफिले पर हमला करते हैं और उनको लूट लेते हैं, तो ये तो ना इब्तिदा अन खुफिया है और ना इंतहा अन खुफिया है, हालांकि इसको भी शरीयत में सरिका कुबरा कहते हैं। तो ये भी सरिका है भाई, तो इसके अंदर तो लुगवी माना यानी खुफिया तौर पर होना मलहूज नहीं है। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं भाई ये जो कतए तरीक है, ये जो सरिका कुबरा है, ये भी खुफिया तौर पर है, अलबत्ता ये इमाम और हाकिम की निगाह से खुफिया तौर पर है। रास्तों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नर और इमाम की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा ये जो डाकुओं ने रास्ते में लोगों को लूटा ये भी खुफिया तौर पर था, और ये डाका किससे छुपकर डाला? हाकिम से छुप कर डाला है, तो इसके अंदर भी देखो लुगवी माना मलहूज है, ये भी छुपा कर है, ये डाका भी छुपा कर है इमाम की निगाहों से भाई। तो कहते हैं वफील कुबरा और सरीका कुबरा के अंदर अनी कत तरीक, यानी कि कत तरीक माना बयान कर रहे हैं, कुबरा से क्या मुराद है कत तरीक। तो कहते हैं वफील कुबरा और सरीका कुबरा के अंदर आनी कत तरीक, मेरी मुराद जो है वो कत तरीक है यानी डाका है। मुसारकत आइन इमामी, मुसारका का माना भी चोरी करना, आयन कहते हैं आंख को भाई, मुराद निगाह है निगाह। तो मुसारकत आइन इमामी, देखो ये आपस में मुजा मुजाफिले हैं भाई, मुसारकत आइन इमामी, तो तर्जमा आखिर से होगा इमाम की आंख की चोरी, यानी इमाम की निगाह की चोरी, यानी यू कहो इमाम की निगाह से चोरी। सरीका कुबरा में भी इमाम की निगाह से चोरी है, उसकी आंखों से छुप कर ये चोरी की जा रही है। तो कहते हैं सरीका कुबरा के अंदर मुसारकत आइनिल इमामी, मुसलमानों के हाकिम की निगाह से चोरी है। लिअन्नहु हुवल मुतसद्दी लिहिफ्ज़ित तरीक़ी, मुतसद्दी तसद्दा या तसद्दा तसद्दियन का माना है किसी काम के दरपे होना भाई, रास्तों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है, खलीफा की और गवर्नर की जिम्मेदारी है। तो कहते हैं लिअन्नहु हुवल मुतसद्दी, इसलिए क्योंकि वही दरपे होता है, लिहिफ्ज़ित तरीक़ी, ये यूं कहो हुवल मुतसद्दी वही मुतवज्जे होता है, लिहिफ्ज़ित तरीक़ी रास्तों की हिफाजत के, भी आवानी ही अपने मददगारों के जरिए, अपने मददगार जो हैं फौज या सिपाही वगैरह जो रखे हुए हैं उनके जरिए वो रास्तों की हिफाजत की तरफ मुतवज्जे होता है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु हुवल मुतसद्दी लिहिफ्ज़ित तरीक़ी भी आवानिही, इसलिए क्योंकि इमाम जो है वो ही रास्तों की हिफाजत के दरपे होता है अपने मददगारों के जरिए। वफी सुग्रा मुसारकत आइनिल मालिकी, और सरीका सुग्रा के अंदर मालिक की निगाह से चोरी है, वो जो माल का मालिक है उसकी निगाह से चोरी है। और मैं यकूम मकाम हूं, या जो मालिक के कायम मकाम हो, सरीका सुग्रा में मालिक की निगाहों से चोरी है या जो मालिक के कायम मकाम हो। मसलन आपने अपना सामान किसी के पास बतौर अमानत के रखवाया है, अब वो जो मुदा है जिसके पास अमानत रखवाई गई है वो मालिक तो नहीं है, इससे कोई शख्स खुफिया तौर पर माल ले गया तो ये भी चोरी ही है, क्योंकि मालिक की निगाह से तो चोरी नहीं, क्योंकि जिसके पास अमानत रखवाई गई है वो तो मालिक नहीं है, लेकिन वो मालिक के कायम मकाम है इस वक्त भाई, तवज्जो है। या कोई शख्स आपसे आरियतन कोई चीज मांग कर ले गया इस्तेमाल के लिए, आपका एक साथी आपसे गाड़ी इस्तेमाल के लिए ले गया और फिर उसने अपने घर के अंदर गाड़ी खड़ी की और वहां से कोई चोर ले गया गाड़ी, तो अब देखो ये गाड़ी तो उसने मालिक से चोरी नहीं की, मुस्तईर से चोरी की है, वो जो आरियतन चीज मांग कर ले गया था, लेकिन ये भी चोरी ही है क्योंकि ये मुस्तईर भी इस वक्त मालिक के दर्जे में है। ये इसी तरह एक आदमी दूसरे की चीज छीन कर जबरदस्ती ले गया यानी गसब कर ली, और इस गासिब से फिर किसने वो चीज चुरा ली, तो ये गासिब मालिक तो नहीं लेकिन इस वक्त ये मालिक के दर्जे में है भाई। तो लिहाजा सरीका कुबरा में इमाम की निगाह से चोरी होती है और सरीका सुगरा के अंदर मालिक की निगाह से चोरी होती है, ये जो मालिक का कायम मकाम हो उसकी निगाह से चोरी होती है। तो ये माना है वफिस सुगरा मुसारकत आइनिल मालिकी औ मैं यकूमु मकामहू, और सरीका सुगरा के अंदर मालिक या जो उसका कायम मकाम होता है उसकी निगाह से चोरी होती है। आगे देखिए قال وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع। भाई अब वही साहिब कुदूरी जो हैं मतन के अंदर तारीफ कर रहे हैं चोरी की। भाई मैंने आपको हाशिए के अंदर बतलाया के चोरी के अंदर कई शर्तें हैं भाई, कि निसाब के बकदर माल होना चाहिए, महफूज होना चाहिए, जल्दी खराब न होने वाला हो, उसमें कोई तावील न हो सके और उसके अंदर किसी किस्म का शुबा न हो भाई। तो कुछ कैदें यहां साहिब कुदूरी जिक्र करेंगे और कुछ आगे चलकर वो जिक्र फरमाएंगे। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं व इदा सरकल आकिल उल बालिग अशरत दराहिमा, और जब कोई आकिल बालिग आदमी जो है वो 10 दिरहम चोरी कर ले, औ मा यब लुगु कीमतुहु अशरत दराहिमा मजरूबतिन, या वो ऐसी चीज चोरी कर ले कि उसकी कीमत 10 ढले हुए दिरहमों तक पहुंचती है। मजरूबतुन भाई, मजरूबा का माना है ढले हुए या मोहर लगे हुए। भाई ये जो दिरहम और दीनार जो है इन पर खास मोहर लगी होती थी, जैसे आजकल के सिक्कों को आप देखते हैं कि उन पर खास सूरत बनी होती है और उसके जरिए पता चलता है कि ये किस मुल्क का सिक्का है भाई। तो इसी तरह दिरहम और दीनार पर बादशाह की जानिब से खास मोहर लगी होती थी भाई। तो अब वो जो 10 दिरहम है, 10 दिरहम से कौन से दिरहम मुराद हैं, ढले हुए यानी मोहर लगे हुए दिरहम मुराद हैं या गैर ढले हुए, तो आपको बतलाएंगे कि ढले हुए दिरहम मुराद हैं यानी जिन पर बादशाह की तरफ से मोहर लगी हो भाई। तो कहते हैं औमा यब लुगु कीमतुहु अशरत दराहिमा मजरूबतिन, या ऐसी चीज चोरी की कि उसकी कीमत जो है 10 ढले हुए दिरहमों तक पहुंचती है। मजरूबतिन और मजरूबतन, इस पर आप नसब भी पढ़ सकते हैं और जर भी। जर पढ़ेंगे आप इस पर जब आप इसको दराहिम की सिफत बनाएं, और दराहिम मुजाफिले है अशारा के लिए। मा यबलुगु कीमतुहु अशारता दराहिमा मजरूबतिन, तो दराहिम मुजाफिले है और मजरूर है, अलबत्ता गैर मुनसरिफ है क्योंकि जमा मुंतहल जुमुआ का वजन है और गैर मुनसरिफ पर कसरा या तनवीन नहीं आती, इसका जर भी फतहा की सूरत में आता है। तो इसकी सिफत बना दें तो मजरूबतिन जो है मजरूर पढ़ेंगे, और आप चाहें तो इस मजरूबा को सिफत बना दें अशरता दराहिम की, क्योंकि अशरा से भी क्या मुराद है, यही दिरहम ही तो मुराद है, और अशरता दराहिम ये अशरा तो मंसूब है, तो मजरूबतन भी आप पढ़ सकते हैं भाई। तो कहते हैं औ मा यबलुगु कीमतुहु अशरता दराहिम मजरूबतिन, या ऐसा माल की उसकी कीमत जो है वो 10 दिरहम तक पहुंचती है। मिन हिर्ज़िन, और कहां से चोरी करे, हिर्ज़ से यानी महफूज जगह से। हिर्ज़ का क्या माना, महफूज जगह भाई, और हिफ्ज यानी महफूज जगह से चोरी करे। ला शुबहा तफीही, और उसके अंदर कोई शुबा भी ना हो, उस माल के अंदर या उस महफूज जगह में कोई शुबा ना हो। मसलन अगर महरम ने चोरी की है तो महरम तो एक दूसरे के घर आते जाते हैं, लिहाजा वहां हिफाजत में शुबा आ गया, मालूम हुआ पूरी तरह हिफाजत नहीं, महरम तो घर के अंदर आता जाता है तो घर की चीजें तो उससे महफूज नहीं है, तो यहां हिफाजत के अंदर शुबा आ गया। या शुबा बाज़ाकात उस माल के अंदर आ जाता है कि चोरी करने वाले का भी उसमें हक होता है, जैसे किसी शख्स ने माल गनीमत से चोरी कर ली, और माल गनीमत में तो तमाम मुसलमानों का हक होता है और ये चोरी करने वाला भी इन्हीं मुसलमानों में से एक मुसलमान है, तो लिहाजा इस माल के अंदर चूंकि इसका अपना भी हक था लिहाजा शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कि मिन हिर्ज़िन, महफूज जगह से चोरी करे, ला शुबहा तफीही, और उस महफूज जगह के अंदर किसी किस्म का शुबा ना हो, तो वजबा अलैहिल क़त्उ, तो इस आदमी पर कता वाजिब है यानी इसका हाथ काटा जाएगा। ये मतन का तर्जमा एक दफा फिर देख लीजिए। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदा सरकल आकिल उल बालिग अशरत दराहिमा, और जब कोई आकिल बालिग आदमी 10 दिरहम चोरी कर ले, औ मा यबलुगु कीमतुहु अशरत दराहिमा मजरूबतिन, या वो इतना माल चोरी कर ले कि उसकी कीमत जो है 10 ढले हुए दिरहमों तक पहुंचती हो। मिन हिर्ज़िन, महफूज जगह से, ला शुबहा तफीही, और उसके अंदर किसी किस्म का शुबा ना हो, तो वजब अलैहिल क़त्उ, तो उस पर कता वाजिब है यानी उस चोर का हाथ काटा जाएगा। वल असलु फीहि क़ौलुहु तआला, और असल जो है इसके अंदर अल्लाह का कौल है। भाई चोर का हाथ क्यों काटा जाएगा, दलील क्या है, तो अब साहिब हिदायत दलील जिक्र फरमा रहे हैं। कहते हैं वल असलु फीहि क़ौलुहु तआला, और असल जो है इसके अंदर अल्लाह ताला का यह कौल है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, फक्तउ अयदियहुमा, इन दोनों के हाथ काट दो। देखो इस आयत से मालूम हुआ कि चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो औरत हो। भाई और आप जाब्ता पढ़ चुके हैं कि मुश्तक पर जब कोई हुक्म लगाया जाए तो उसकी इल्लत मुश्तक मिन्हु यानी वो मसदर होता है। तो यहां पर भी चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म दिया है अल्लाह ने, और इसका मसदर क्या है? सरीका है यानी चोरी। मालूम हुआ चोरी सबब है इस हुक्म की। यह हाथ काटने का जो हुक्म अल्लाह ने दिया उसका सबब और उसकी इल्लत जो है वो चोरी है। भाई तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वसारिकु वसारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और औरत तो उनके हाथ काट दो। अल आया वला बुद्द मिन इतिबारिल अक्ल वल बुलूग। अब भाई मतन के अंदर कई कैदें जिक्र थी, साहिबे हिदायत हर एक की तफसील बयान फरमाएंगे। मतन के अंदर आया था कि अगर आकिल बालिग चोरी कर ले तो साहिबे हिदायत आपको बतलाएंगे कि आकिल बालिग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आकिल और बालिग होगा तो अब यह सरिका का जुर्म है और जब जुर्म किया है तो हाथ काटा जाएगा, जबकि अगर नाबालिग यानी बच्चा या मजनून चोरी कर ले तो फिर उस सूरत में हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई तो कहते हैं वला बुद्द मिन इतिबार अल-अक्ल वल बुलूग, और जरूरी है अकल और बालिग होने का एतबार। लिअन्न अल-जिनायत ला यतहक्कक दूनहुमा, इसलिए क्योंकि चोरी का जुर्म नहीं पाया जाता इन दोनों के बगैर। आकिल और बालिग होगा तो सरीका का जुर्म भी पाया गया, आकिल बालिग नहीं तो सरीका का जुर्म भी नहीं। तो कहते हैं लिअन्न अल-जिनायत ला यतहक्कक दूनहुमा, इसलिए क्योंकि चोरी का जुर्म अकल और बुलूग के बगैर नहीं हो सकता। वल-क़त्उ जज़ाउ अल-जिनायति, और हाथ का काटना यह जुर्म का बदला है। हाथ का काटना जुर्म का बदला है, और जुर्म तो तब होगा जब आकिल और बालिग होगा। आकिल बालिग नहीं तो जुर्म नहीं, जब जुर्म नहीं तो हाथ का काटना भी नहीं होगा। तो कहते हैं वल-क़त्उ जज़ाउ अल-जिनायति, और हाथ का काटना यह तो जुर्म का बदला है। आगे देखिए वला बुद्द मिन तकदीर बिल माल खतीर, खतीर का माना है भाई अहम, अहम ये इसी तरह इसका माना है खतरनाक। भाई यहां मुराद है कसीर, भाई माल खतीर से क्या मुराद है? माल कसीर भाई। और तकदीर का लफ्ज आया, मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि कद्दर युकद्दिरु, तकदीर का एक माना है मुकर्रर करना, और इसी तरह तकदीर का एक माना है अंदाजा लगाना। तो मौका महल के मुताबिक जो माना भी आपको मुनासिब मालूम हो आप वो कर सकते हैं। भाई तो कहते हैं वला बुद्द मिन तकदीर बिल माल खतीर, भाई देखिए मतन के अंदर आया था कि जब कोई आकिल बालिग आदमी 10 दिरहम की चोरी कर ले तो फिर इस सूरत में उसका हाथ काटा जाएगा। तो साहिबे हिदाया अब उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि ये 10 दिरहम की कैद क्यों लगाई गई मतन के अंदर कि 10 दिरहम की चोरी करेगा फिर हाथ काटा जाएगा। साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि ये हद का मामला है, चोरी के अंदर एक शख्स का हाथ काटा जाएगा, लिहाजा जरूरी है कि माले कसीर होना चाहिए, माले कसीर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर माले कसीर नहीं है, थोड़ा माल है तो उसमें तो लोगों की रगबत कम होती है भाई, और नीस थोड़ा माल जो है वो लेने वाला उमूमन मालिक से छुपाता भी नहीं है, उसी के सामने ही उठा लेता है और मालिक भी इसमें रोक टोक नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं वला बुद्द मिन तकदीरी बिल माल खतीरी, और जरूरी है इसका अंदाजा लगाना माले कसीर के साथ। जरूरी है कि सरीका का अंदाजा किससे लगाया जाए? माले कसीर के साथ, उसमें हाथ काटा जाए। कहते हैं लिअन्न रगबाती तफ्तुरु फिल हकीरी, रगबात जमा है रगबत की भाई, और रगबत कहते हैं शौक और मैलान को भाई, और फतरा यफ्तुरु का माना है कम होना। लिअन्न रगबाती तफ्तुरु फिल हकीरी, इसलिए क्योंकि रगबतें जो हैं वो कम होती हैं हकीर चीज में, हकीर और मामूली चीज में लोगों की रगबत और लोगों का शौक कम होता है। वकदा आखिदुहु ला युख्फी, और इसी तरह उस हकीर चीज को उठाने वाला उसको छुपाता भी नहीं है। कोई हकीर या मामूली चीज है तो मालिक के सामने ही लोग उठा लेते हैं और मालिक भी अमूमन उस पर रोक टोक नहीं करता भाई, तो लिहाजा मामूली चीज मालिक के सामने ही उठा ली जाती है। फला यतहक्कक रुकनुहु, तो लिहाजा चोरी का रुकन ही नहीं पाया गया। चोरी का रुकन क्या था? कि मालिक की निगाहों से पोशीदा तौर पर चीज उठाई जाए, और मामूली चीज तो अमूमन पोशीदा तौर पर नहीं उठाई जाती, वो तो मालिक के सामने ही ले ली जाती है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वला बुद्ध मिन तकदीरी बिलमाल खतीरी, और जरूरी है कि चोरी का अंदाजा किया जाए माले कसीर के साथ, लिअन्न रगबात तफ्तुरु फिल हकीरी, इसलिए क्योंकि शौक जो है वो कम हो जाता है हकीर और मामूली चीजों में, वकदा आखिदुहु ला युख्फी, और इसी तरह मामूली चीज को उठाने वाला वो उसको छुपाता नहीं है, यानी मालिक की निगाहों से छुपाता नहीं है, फला यतहक्ककु रुकनुहु, तो फिर तो चोरी का रुकन नहीं पाया गया, जब मालिक के सामने उठाएगा तो चोरी का रुकान नहीं पाया गया, हालांकि चोरी में तो जरूरी था कि पोशीदा तौर पर उठाए भाई। वला हिकमतु जजरी, और नीज इसके अंदर डांट की हिकमत भी ना पाई गई। हिकमतु जजर, जजर का माना है डांटना और धमकाना, तो इसमें डांटने और धमकाने वाली हिकमत भी नहीं है। तो यहां पर अगर इस मामूली चीज पर ही सजा दी जाए तो इसके अंदर तो इस सजा की हिकमत ही खत्म हो जाएगी। सजा की हिकमत क्या थी कि एक चीज जो कसीरुल वुकू हो उससे लोगों को रोका जाए। शरीयत सजा क्यों मुकरर करती है कि एक चीज कसीरुल वुकू होती है और उससे शरीयत लोगों को रोकना चाहती है, और यहां अगर माले कलील है, कोई हकीर और मामूली चीज है, तो इसमें तो लोगों की रगबत ही नहीं है, तो ये कसीरुल वुकू नहीं। जब ये कसीरुल वुकू नहीं तो यहां सजा देने में कोई हिकमत नहीं है भाई। तो कहते हैं वला हिकमतु जजरी, और यहां पर जजर की हिकमत भी नहीं है, लिअन्नहा फी मा यगलिबू, इसलिए क्योंकि ये जजर की जो हिकमत है फी मा यगलिबू उन चीजों में होती है जो गालिब हों, जो कसीरुल वुकू हों भाई। व तकदीर भी आशरती दराहिम मजहबुना, और नीस अंदाजा लगाना 10 दिरहमों के साथ ये हमारा मजहब है, हमारे नजदीक 10 दिरहम की चोरी पर हाथ काटा जाएगा, इससे कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। वइंद शाफिई रहिमहुल्लाह तआला तकदीर बिरुबुई दीनारिन, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक इसका अंदाजा रुबुई दीनार के साथ है, दीनार का चौथाई हिस्सा, इसका अंदाजा रुबुई दीनार यानी दीनार के चौथे हिस्से के साथ है। उनके नजदीक दीनार का चौथे हिस्से के बराबर कोई चीज चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाएगा। वइंद मालिकिन रहिमहुल्लाहु तआला बिसलासती दराहिमा, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक इसका अंदाजा लगाया गया है 3 दिरहमों के साथ। वो फरमाते हैं 3 दिरहम जो है इसके बकदर कोई माल चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाएगा। लहुमा, इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन अलकता अला अहदी रसूलिल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम मा कान इल्ला फी समनिल मीजन्नी। मीजन्नुन भाई, मीम जीम और नून मुशद्दद है, मीजन्नुन। मीजन जो है याद रखो ये ढाल को कहते हैं, वो आला जिसके जरिए तलवार का वार रोका जाता है, यह अमूमन लोहे का होता है भाई, लेकिन बाज औकात चमड़े वगैरह या और किसी चीज का भी होता है कि जिसके जरिए तलवार के वार से इंसान अपने आप को बचा ले भाई। तो लहुमा, इमाम मालिक और इमाम शाफिई रहिमहुम अल्लाह तआला की दलील यह है कि अन अलकता अला अहदी रसूलिल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, कि हुजूर अलैहि सलाम के जमाने में जो हाथ काटा जाता था मा कान इल्ला फी समनिल मीजन्नी, वो नहीं होता था मगर ढाल के समन में, यानी ढाल के बराबर जिस चीज के समन होते थे या कीमत होती थी सिर्फ उसी में हाथ काटा जाता था हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में। हदीस फिर देख लें, अन अलकता अला अहदी रसूलिल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा कान इल्ला फी समनिल मीजन्नी, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में हाथ का काटना नहीं होता था मगर ढाल के समन में, यानी इतनी मिकदार के अंदर। व अकल्लु मा नुकिल फी तकदीरिही सलासतु दराहिमा, और वो कम से कम जो नकल किया गया है फी तकदीरिही उसका अंदाजा लगाने में सलासतु दराहिमा, वो 3 दिरहम है, यानी जो ढाल है तो ये ढाल की कितनी कीमत होती थी, इसमें मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं, और इमाम मालिक और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि कम से कम जो इनकी कीमत का अंदाजा लगाया गया है बाज रिवायतों में वो 3 दिरहम है जी। वो 3 दिरहम है, और बाजों ने इससे ज्यादा का अंदाजा लगाया 4 दिरहम 5 दिरहम या 6 दिरहम, या बाजों ने 10 दिरहम के साथ अगर अंदाजा लगाया है तो अकल तो यकीनी है क्योंकि अकल सब में आ जाएगा। जिन्होंने चार जिक्र किया उस चार के अंदर भी देखो तीन तो आ गए, और जिन्होंने पांच जिक्र किया उस पांच के अंदर भी देखो तीन है, या जिन्होंने दस जिक्र किया उसके अंदर भी तीन है। मालूम हुआ तीन तो यकीनी है और तीन से ऊपर जो है वो यकीनी नहीं। तो लिहाजा हमने यकीनी कौल को इख्तियार किया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह अकल लुमा नुकिला फी तकदीर ही सला सतु दराहिमा, और वो कम से कम मकदार जो नकल की गई है इसका अंदाजा लगाने में वो तीन दिरहम हैं। वल अखजुबिल अकल, और कम को लेना, जो कम से कम अंदाजा लगाया गया है उसको लेना। वह हुअल मुतयक्कनु बिही, इस हाल में कि वो यकीनी है। चार के अंदर तीन तो आ गए तो तीन तो यकीनी है, पांच के अंदर भी तीन तो हैं तो तीन यकीनी है। तो तीन जो है वो तो है यकीनी और इससे जायद जो है वो यकीनी नहीं। तो कहते हैं वल अख्ज़ु बिल अक़ल, और सबसे कम को ले लेना। वह हुवल मुतयक्कनु बिही, इस हाल में कि ये यकीनी है। औला, ये बेहतर है, सबसे कम समन वाले कौल को लेना ये बेहतर है भाई। गैर अन्न शाफिई रहिमहुल्लाहु तआला यकूलु, इलावा इसके इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कानत कीमतु दीनार अला अहदि रसूलिल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, के दीनार की कीमत हुजूर अलैहि सलाम के जमाने में इसने अशरा दिरहमन, 12 दिरहम होती थी। वह सलासतु रुबुउहा, और सलासा जो है वो रुबए दीनार है। जब एक दीनार 12 दिरहम का है तो रुबए दीनार 3 दिरहम का बन गया भाई। और नीसबाज अहादीस के अंदर भी रुबए दीनार का जिक्र आता है, तो इसलिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने रुबए दीनार को जिक्र किया। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना अन्नल अख्ज़ बिल अक्सरी फी हादल बाबी औला इख्तियालन लिदर इल हद्दी। हम कहते हैं कि हद का मामला है और यहां कोशिश की जाएगी कि किसी तरह हद को टाल दिया जाए, हद को साकित कर दिया जाए। लिहाजा यहां पर अक्सर कीमत वाले कौल को इख्तियार करना बेहतर है, यानी उस कॉल को इख्तियार किया जाए जिसमें उस ढाल की ज्यादा कीमत बयान की गई हो, और ज्यादा से ज्यादा तो उस ढाल की कीमत 10 दिरहम तक बयान की गई है। लिहाजा हमने 10 दिरहम वाले कॉल को इख्तियार कर लिया क्योंकि हमारे कॉल में एहतियात ज्यादा है, हमारे कॉल में एहतियात ज्यादा है। तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि 10 दिरहम के कॉल के अंदर एहतियात किस तरह ज्यादा है। भाई देखो, जिनके नजदीक 3 दिरहम की चोरी में हाथ काटा जाता है, तो जब उनके नजदीक 3 दिरहम में हाथ काटा जाता है तो 10 दिरहम में उनके नजदीक भी बतरीके औला हाथ काटा जाएगा। जिनके नजदीक सिर्फ 4 दिरहम की चोरी में ही हाथ काट दिया जाता है तो उनके नजदीक भी जब 4 दिरहम में हाथ काटा जा रहा है तो 10 में तो बतरीके औला हाथ काटा जाएगा। इसी तरह जिनके नजदीक उस ढाल की कीमत 5 दिरहम होती थी, मालूम हो 5 दिरहम के अंदर चोर का हाथ काटा जाएगा, तो जिनके नजदीक 5 दिरहम में भी हाथ काटा जाता है तो 10 दिरहम के अंदर तो बतरीके औला उनके नजदीक भी हाथ काटा जाएगा। तो मालूम हुआ 10 दिरहम के अंदर हाथ का काटना यह तो बिल इत्तेफाक है, सबके नजदीक 10 दिरहम के अंदर हाथ काटा जाएगा। तो इसीलिए हमने 10 दिरहम वाले कौल को इख्तियार किया क्योंकि इसमें एहतियात ज्यादा है, जबकि इससे कम के अंदर तो मालूम नहीं वो शरई चोरी का जुर्म है भी या नहीं। एक आदमी का हाथ काटा जा रहा है, इंतहा दर्जे की सख्त सजा दी जा रही है, मालूम नहीं ये वो इंतहा दर्जे वाला जुर्म है भी या नहीं। इसलिए क्योंकि बाजों ने अगरचे 3 दिरहम बयान किया है लेकिन बाकियों ने तो 3 दिरहम से ज्यादा बयान किया है, तो लिहाजा 3 दिरहम के अंदर हाथ काटने में शुबा आ गया। इसी तरह 4 दिरहम के अंदर भी हाथ काटने में शुबा आ गया क्योंकि बाजों ने इससे भी ज्यादा कीमत जिक्र की है, जबकि हमारा कौल लिया जाए तो उसमें तो बिल इत्तेफाक सबके नजदीक जो है कतई यद साबित होता है। तो इसलिए हमारे कौल में एहतियात ज्यादा है भाई। वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नल अख्ज़ बिल अक्सरी फी हादल बाबी औला, के अक्सर कीमत वाले कौल को लेना इस बाब के अंदर बेहतर है। इख्तियालन लिदर इल हद्दी, हिला करते हुए हद को टालने के लिए। वहादा लिअन्न फिल अकल शुभत अदमिल जिनायती, और यह इसलिए क्योंकि कम मकदार के अंदर जिनायत न होने का शुबा होता है। 3 दिरहम में अगर आप हाथ काटते हैं तो बाजों ने तो 10 दिरहम कीमत जिक्र की थी उस ढाल की, तो देखो 3 दिरहम के अंदर हाथ काटने में शुभ आ गया। इसी तरह अगर आप 4 दिरहम के अंदर हाथ काटने का हुक्म देते हैं तो बाजों ने तो इससे ज्यादा कीमत बयान की थी उस ढाल की, तो 4 के अंदर हाथ काटने में शुभ आ गया। तो इसी तरह जो भी मकदार जिक्र की जाए उसके अंदर हाथ काटने के अंदर शुबा मौजूद है, लेकिन 10 दिरहम तो सबसे ज्यादा कीमत है, उसके अंदर तो किसी किस्म का शुबा मौजूद नहीं, उसमें तो सबके नजदीक हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए लिअन्नफिल अकल लिशुबहता अदमिल जिनायती, इसलिए क्योंकि कम मकदार के अंदर तो चोरी के जुर्म के न होने का शुबा होता है। वही दारिअतुन लिलहद्दी, और शुबा जो है ये तो हद को साकित कर देता है। वक़द तअय्यद ज़ालिका बिक़ौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, और तहकीक इस हमारे इस कौल के हमारे इस मजहब की ताइद होती है हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल से कि आपने फरमाया ला क़त्अ इल्ला फी दीनारिन औ अशरति दराहिमा, कि हाथ काटना नहीं है मगर 1 दीनार में या 10 दिरहम में, हाथ काटना नहीं है मगर 1 दीनार में या 10 दिरहम में। तो देखो इस हदीस से मालूम हुआ 10 से कम दिरहमों में हाथ नहीं काटा जाएगा। आगे देखिए वस्मुद दराहिम युतलकु अलल मजरूबति उर्फन जी, यहां से साहिब हिदाया ये बतला रहे हैं कि मतन के अंदर कैद आई थी कि वो दिरहम ढले हुए हों, कि जब कोई शख्स 10 दिरहम की चोरी करे या ढले हुए 10 दिरहमों की कीमत के बकदर चोरी करे, तो वहां ढले हुए दिरहमों की कैद आई थी। तो ये कैद क्यों आई, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदायत। आपको बतलाएंगे कि उर्फ के अंदर यानी आम लोगों की आदत यह है कि वो दिरहम उन्हीं को कहते हैं जो ढले हुए हों, यानी जिन पर बादशाह की तरफ से मोहर लगी हुई हो, और जो गैर ढले हुए होते हैं उनको आमतौर पर दिरहम नहीं कहा जाता। तो उर्फ के अंदर ढले हुए दिरहमों को ही दिरहम कहा जाता है, इसीलिए साहिब कुदूरी ने भी मतन के अंदर ढले हुए होने की कैद लगाई भाई। तो कहते हैं वस्मु दराहिमी युतलकु अलल मजरूबति उर्फन, और दिरहम का जो इसम है इसका इतलाक किया जाता है यानी इसको बोला जाता है अलल मजरूबति ढले हुए दिरहमों पर उर्फन उर्फ के एतबार से। दराहिम का इसम बोला जाता है ढले हुए दिरहमों पर उर्फन उर्फ के एतबार से। फहादा युबय्यिनु लका इश्तिरातल मजरूबी, तो हमारी यह बात जो है बयान कर देती है आपके लिए मजरूब होने की शर्त को। मजरूब यानी ढले हुए, ढले हुए मतन में जो मजरूब की कैद आई थी, मजरूब की शर्त आई थी, उस मजरूब की शर्त को बयान कर देती है हमारी यह बात जो हमने जिक्र कर दी। क्या? कि उर्फ में ढले हुए दिरहमों को ही दिरहम कहते हैं भाई, इसीलिए मतन में ढले हुए की कैद लगाई गई। तो कहते हैं फहाजा युबय्यिनु लका इश्तिरातल मजरूबी, तो यह बात आपके लिए बयान कर देती है मजरूब होने की शर्त। कमा काल फिल किताबी, जैसे कि साहिब कुदूरी ने किताब में फरमाया यानी मतन के अंदर, वह हुआ जाहिरु रिवायती, और यह जाहिर रिवायत है कि वह दिरहम ढले हुए हों। वह हुआ असाह, और यह कौल ज्यादा सहीह है। बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि चाहे वो दिरहम ढले हुए हों या चाहे गैर ढले हुए हों, लेकिन साहिब हिदाया ने बतलाया कि ये जो ढले हुए होने की शर्त है यही जाहिर रिवायत के अंदर भी जिक्र है भाई, और यही कौल ज्यादा सहीह है। गैर ढले हुए दिरहम वो कौल भी सही है, लेकिन ये वाला कौल ज्यादा सहीह है। तो कहते हैं वह हुआ जाहिरु रिवायती, और ये जाहिर रिवायत है। वह हुआ असाहु, और ये कौल ज्यादा सहीह है। रियायतन लिकमालिल जिनायती, जुर्म के कामिल होने की रियायत रखने के लिए। कामिल दर्जे का जुर्म तब ही होगा जब उस माल की कीमत ढले हुए 10 दिरहमों तक पहुंचती हो भाई, इसलिए क्योंकि गैर ढले हुए जो दिरहम है उनकी कीमत तो कम होगी ढले हुए दिरहमों से, जब उस माल की कीमत गैर ढले हुए 10 दिरहमों के बराबर है, लेकिन ढले हुए 10 दिरहमों से कम है तो जुर्म तो कामिल दर्जे का ना हुआ। और हालांकि ये तो हद का मामला है, यहां तो आप हाथ काट रहे हैं दूसरे आदमी का, तो लिहाजा जुर्म कामिल दर्जे का हो फिर ही हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वह हुवल असहु, और यही कौल ज्यादा सहीह है। रियायतन लिकमालिल जिनायती, जिनायत के कामिल होने की रियायत रखने के लिए। हत्ता लौ सरका अशरतन तिबरन कीमतुहा अनकसु मिन अशरतिन मजरूबतिन ला यजिबुल कत्उ, ये तिबरन याद रखो तमीज है अशरतन की, और अशरा की तमीज जो है वो उसकी तरफ उमूमन अशरा की इजाफत की जाती है, और वो जमा मजरूर होती है अशारातु कुतुबिन, लेकिन यहां पर साहिब हिदायत ने इजाफत नहीं की, तो बगैर इजाफत के आशरा पर तनवीन पढ़ेंगे भाई। यहां तिबर का लफ्ज आया, याद रखो तिबर कहते हैं सोने और चांदी की डली, सोने और चांदी का जो टुकड़ा है उसको कहते हैं तिबरुन। यहां मुराद चांदी है क्योंकि दिरहम की बात चल रही है। सूरत यह है किसी ने दूसरे से चांदी के 10 टुकड़े चोरी कर लिए, चांदी के 10 टुकड़े चोरी कर लिए, लेकिन उन टुकड़ों की कीमत ढले हुए 10 दिरहमों से कम है तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं हत्ता लौ सरका अशरतन तिबरान, यहां तक कि अगर किसी ने 10 ऐसे चांदी के टुकड़े चोरी कर लिए कि कीमतुहा अनकसु मिन अशरतिन मजरूबतिन, कि उनकी कीमत 10 ढले हुए दिरहमों से कम है, तो ला यजिबुल कतउ, तो हाथ का काटना वाजिब नहीं होगा। वल मुअतबरु वज़नु सबअति मसाकीला, और मुअतबर जो है सबअतु मसाकील का वजन है। भाई याद रखो यहां दिरहम का जिक्र आया, दिरहम के मुख्तलिफ औजान होते थे भाई, दिरहम के मुख्तलिफ औजान होते थे। बाज दिरहमों का वजन ज्यादा होता था, वो आला दिरहम शुमार होते थे, और बाज दिरहमों का वजन मुतवसित होता था, और बाज दिरहमों का वजन कम होता था और वो नाकिस शुमार होते थे। तो अब कौन से दिरहम यहां मुराद हैं, कौन से 10 दिरहम यहां मुराद हैं, तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे वो दिरहम मुराद हैं जो सबअतु मसाकील वजन वाले हों, वो सबअतु मसाकील वजन वाले हों। याद रखो ये दीनार जो है ये सोने का होता है, दिरहम जो है वो चांदी का होता है, और दीनार और मिसकाल ये एक ही वजन का नाम है। दीनार और मिसकाल, आप चाहे मिसकाल कह लें आप चाहे दीनार कह लें, बात एक ही है भाई। अब याद रखो, याद रखो औजान भाई, 8 चावल के दाने हो तो फिर ये एक रत्ती बनती है, और 8 रतियां मिलें तो फिर ये एक माशा बनता है, और 12 माशे हो तो ये एक तोला बनता है। फिर दोहराएं, 8 चावल के दाने हो तो एक रत्ती, और 8 रतियां हो तो एक माशा, और 12 माशे हो तो एक तोला। अब ये दिरहम और दीनार का वजन याद रखें, दीनार का वजन होता था 4.5 माशे, दीनार का वजन ज्यादा था 4.5 माशे, और दिरहम का वजन जो है 3 माशे 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती, यानी रत्ती का 5वां हिस्सा। तो देखो दीनार है 4.5 माशे का, और दिरहम है 3 माशे 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती, यानी दीनार से कम है दिरहम भाई, तवज्जो है। तो वजन सबअत मसाकील से मुराद वो दिरहम है कि 10 दिरहमों का वजन 7 दीनारों के बराबर हो, 10 दिरहमों का वजन 7 दीनारों के बराबर हो। और मैंने आपको बताया दीनार और मिसकाल एक ही चीज है, यानी 10 दिरहमों का वजन 7 मसाकील के बराबर हो। यह है वजन सबअति मसाकील, 7 मिसकीलों वाला वजन, यानी 10 दिरहमों का वजन कितना हो 7 मसाकील के बराबर भाई, तवज्जो है। अब आइए जरा हिसाब कर लेते हैं कि 10 दिरहम 7 मिसकाल के बराबर हैं या नहीं। सबसे पहले 7 मिसकाल का वजन बना लें, 7 मिसकाल यानी 7 दीनार, और हर दीनार है 4.5 माशे, हर दीनार में 4-4 माशे पूरे हैं, तो 7 चौके 28, ये 28 माशे हो गए, और हर दीनार के अंदर आधा आधा माशा मजीद भी है, तो 7 मरतबा आधे आधे माशे को मिलाएं, ये कितने माशे बन गए 3.5। तो 28 माशे पहले थे 7 दीनार में, और 3.5 माशे और हो गए, ये बन गए 31 भाई, यानी 31 माशे पूरे और आधा माशा। बात समझ में आ गई। अब जरा आइए दिरहम पर भाई, 10 दिरहम जो हैं इनका वजन भी 31.5 माशे होना चाहिए, फिर ही ये वजनु सबाती मसाकील वाले दिरहम होंगे। तो एक दिरहम 3 माशे 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती है, तो हर दिरहम में मालूम हुआ 3 माशे हैं, तो 10 दिरहमों में 30 माशे हो गए, ये 30 माशे आप अलग रख लें, 30 माशे 10 दिरहमों में, और हर दिरहम में एक एक रत्ती पूरी भी है, हर दिरहम में एक रत्ती है और खुमुसे रत्ती भी है, खुमुसे रत्ती को जरा छोड़ दें, एक एक रत्ती हर दिरहम से ले लें, तो 10 दिरहमों के अंदर 10 रत्तियां हमें मिल गई, 30 माशे मिल चुके हैं और 10 रत्तियां। फिर हर दिरहम के अंदर एक खुमुसे रत्ती भी है, रत्ती का पांचवा हिस्सा, तो पांच दिरहमों के अंदर जाकर फिर एक रत्ती पूरी हो जाएगी। हर दिरहम में रत्ती का पांचवा हिस्सा हमें मजीद मिल रहा है, तो पांच दिरहमों में एक रत्ती हो गई और दस दिरहमों में दो रत्तियां, तो हमें दो रत्तियां मजीद मिल गई। दस रत्ती हमारे पास पहले थी, दो रत्ती और मिला दी तो बारह रत्ती हो गई। तो दस दिरहम जो हैं वो तीस माशे और बारह रत्ती हो गए, और आठ रत्तियां हो तो एक माशा बनता है, तो बारह रत्तियों से डेढ़ माशा मजीद बन गया, तो तीस और डेढ़ देखो वही साढ़े इकतीस बन गया, यानी इकतीस माशे पूरे और आधा माशा जायद। बात समझ में आ गई? तो दस दिरहम जो हैं वो भी साढ़े इकतीस माशे के, और सात दीनार जो हैं वो भी साढ़े इकतीस माशे के। अब जरा एक और पैमाने से देख लें भाई, याद रखो पांच जौ के दाने हों तो ये एक किरात बनता है। किरात भाई काफ दो नुकतों वाला है और आखिर में तो है भाई, तो जौ, तो किरात भाई, तो पांच जौ के दाने हों तो ये एक किरात बनता है। और याद रखना दिरहम जो है वो चौदह किरात का होता है और दीनार जो है वो बीस किरात का होता है। दीनार बीस किरात, तो लिहाजा सात दीनार का वजन बनाएं। सात दीनार का वजन कितना? सात को बीस से जरब दें, 140 किरात हो गया। मालूम हुआ सात दीनार या यूं कहें सात मिसकाल जो हैं ये 140 किरात के हैं भाई, इनका वजन 140 किरात है। और अब आ जाइए दिरहमों पर, एक दिरहम 14 किरात का है तो 10 दिरहम कितने के हो गए? 140 किरात। तो देखो ये भी 140 किरात बन गए, 10 दिरहमों का वजन भी 140 किरात और सात मसाकील का वजन भी 140 किरात। तो ये वाले दिरहम मोतबर हैं भाई, क्योंकि मैंने बताया बाद दिरहम इससे ज्यादा वजन वाले होते थे और बास कम वजन वाले होते थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने सहाबा के मशवरे से ये वाली मकदार जो है मुतय्यन कर दी भाई। तो कहते हैं वल मुअतबर वज़्नु सबअति मसाकीला, और वो दिरहम जो मुअतबर है वज़्नु सबअति मसाकीला वो सात मसाकील वजन वाला है। लिअन्नहुल मुतआरफु फी आम्मतिल बिलादी, इसलिए क्योंकि यही दिरहम मुतआरफ यानी राइज है, फी आम्मतिल बिलादी अक्सर शहरों में, अक्सर शहरों में यही दिरहम राइज हैं। वकौलुहू, और मातिन का जो कौल था, साहिब कुदूरी ने मतन में फरमाया था, देखिए जरा मतन पर आइए भाई, कालब इदा सरकल आकिलुल बालिगु अशरत दराहिमा, कि जब कोई आकिल बालिग दस दिरहम की चोरी कर ले, और मा यब लुगु कीमतुहू अशरत दराहिमा मजरूबतन, या इतना माल की जिसकी कीमत दस ढले हुए दिरहमों तक पहुंचती हो। तो देखो मतन में दिरहम दस दिरहम जिक्र हैं, और अगर कोई और माल है तो उसकी कीमत लगाई जाएगी कि वो दस दिरहम को पहुंच रहा हो, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, चोरी करने वाले ने चाहे सोना ही क्यों ना चुराया हो उसकी भी कीमत लगाई जाएगी। अगर उसकी कीमत दस ढले हुए दिरहमों तक पहुंचती है तो चोर का हाथ काटा जाएगा वरना हाथ नहीं काटा जाएगा। तो यही बात अब साहिब हिदाया बयान फरमाने लगे हैं। अब आइए फिर अपने सबक पर, कहते हैं वकौलु, और साहिब कुदूरी का जो कौल था आगे मतन की इबारत जिक्र कर रहे हैं, औ मा यब लुगु कीमतुहु अशरत दराहिमा, या ऐसी चीज हो कि उसकी कीमत दस दिरहमों तक पहुंच रही हो। ये जो मतन के अंदर आया, कहते हैं इशारतुन, इसमें इशारा है, इसमें इशारा है इला अन्न गैरत दराहिम युतबरु कीमतुहु बिहा, कि दिरहमों के अलावा कोई और चीज हो तो उनकी कीमत का एतबार किया जाएगा, बिहा उन दस दिरहमों के साथ, अगर उनकी कीमत दस दिरहम हुई तो फिर हाथ काटा जाएगा। वह इन का न जहबन, अगरचे वो सोना ही क्यों ना हो, वह सोना भी चोरी कर ले तो उसके अंदर उसकी कीमत लगाई जाएगी, अगर वो दस दिरहम तक हुई तो हाथ काटा जाएगा। वला बुद्दा मिन हिर्ज़िन ला शुबहता फीही, और नीज मतन के अंदर आया था मिन हिर्ज़िन ला शुबहता फीही, कि ऐसी जगह से माल चोरी करे कि वो महफूज जगह हो और नीज उसमें किसी किस्म का शुबा भी ना हो। तो अब उसको भी जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं वला बुद्द मिन हिर्ज़िन ला शुबहता फीही, और जरूरी है ऐसी महफूज जगह का होना कि ला शुबहता फीही, कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई शुबा ना हो। लिअन्न शुबहता दारिअतुन, इसलिए क्योंकि शुबा जो है वो तो साकित करने वाला है, यानी शुबा तो हद को साकित कर देता है, खत्म कर देता है। वसनुबय्यिनहु मिन बाद इंशा अल्लाह ताला, और अन करीब हम इसको बाद में बयान करेंगे, अगली फसल में साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं लिहाजा ऐसा हिर्ज हो कि उसमें शुबा ना हो। लिहाजा अगर कोई महरम चोरी कर ले तो महरम के लिए तो हिर्ज में शुबा आ गया, तो महरम का हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। आगे देखिए, قال والعبد والحر في القطع سواء, साहिब कुदूरी फरमाते हैं والعبد والحر في القطع سواء, कि गुलाम और आजाद हाथ के काटने में बराबर हैं। यानी चोरी करने वाला चाहे आजाद आदमी हो चाहे गुलाम हो, दोनों का हाथ काटा जाएगा। वैसे तो गुलाम की सजा निसफ होती है, लेकिन यहां एक तो तंसीफ नहीं हो सकती, यहां पर हाथ का काटना उसको आधा कर दिया जाए, यहां आधा नहीं किया जा सकता। और नीस कुरान के अंदर भी कोई फर्क नहीं किया गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वसारिक वसारिकतु फक्तहु अईदियहुमा, यहां पर आजाद और गुलाम का कोई फर्क नहीं किया गया। मुतलकन अल्लाह फरमा रहे हैं चोरी करने वाला मर्द और औरत जो है उनके हाथ काट दो। तो काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल अब्दु वल हुर्रु फिल कत्अ सवाउन, और आजाद और गुलाम जो है हाथ के काटने में बराबर हैं। भाई देखिए ये मतन है और मतन के अंदर आया वल अब्दु वल हुर्रु फिल कत्अ सवाउन, देखो अब्द के लफ्ज को हुर पर मुकदम कर दिया गया, हालांकि हुर के लफ्ज को मुकदम होना चाहिए था, लेकिन साहिब कुदूरी ने अब्द के लफ्ज को मुकदम कर दिया। वजह यह कि दरअसल गुलाम के बारे में शुबा होता है कि इसको आधी सजा होती है, तो इसका हाथ नहीं काटना चाहिए, तो चूंकि गुलाम के बारे में शुबा हो रहा था इसलिए गुलाम के लफ्ज को मुकदम कर दिया। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल अब्दु वल हुर्रु फिल कत्अ सवाउन, और गुलाम और आजाद जो है हाथ के काटने में बराबर हैं। लिअन्न नस लम यफसिल, इसलिए क्योंकि नस ने फर्क नहीं किया, नस ने यानी कुरान की आयत में कोई फर्क नहीं किया गया। वसारिको वसारिकतो फक्तहु अईदियहुमा, यहां आजाद और गुलाम में कोई फर्क नहीं किया गया, सबका एक ही हुक्म है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत का हाथ काट दो। तो कहते हैं लिअन्न नस लम यफसिल, इसलिए क्योंकि नस ने फर्क नहीं किया आजाद और गुलाम में। वलिअन्न तंसीफ मुतअज़्ज़िरुन, यहां से अब अकली दलील भी जिक्र कर रहे हैं कि गुलाम और आजाद में कोई फर्क नहीं होगा। वजह यह कि यहां पर हाथ काटना जो है उसकी तंसीफ नहीं हो सकती, उसको आधा नहीं किया जा सकता। कहते हैं वली अन्न तंसीफ मुतअज़्ज़िरुन, और इसलिए क्योंकि तंसीफ जो है मुमकिन नहीं है, यानी इस सजा को आधा करना मुमकिन नहीं है। फयतकामलु, तो लिहाजा यह सजा कामिल होगी। सियानतन लिअमवालिन नासी, लोगों के माल की हिफाजत के लिए, लोगों के माल की हिफाजत के लिए हाथ काटा जाएगा चाहे आजाद हो चाहे गुलाम हो। वयजिबुल कत्उ बिइकरारिही मर्रतन वाहिदतन, और एक ही दफा चोर इकरार कर ले तो उस पर हद साबित हो जाएगी और उसका हाथ काटा जाएगा। यह मजहब है इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला का, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि जिना के मसले के अंदर गवाह चार थे तो वहां पर इकरार भी चार मर्तबा जरूरी है, और यहां पर चोरी के मसले में गवाह दो हैं तो यहां इकरार भी दो दफा होना चाहिए भाई। तो वो इकरार को कियास करते हैं गवाही पर, क्योंकि इन दोनों के जरिए चोरी साबित हो सकती है, या गवाही के जरिए या इकरार के जरिए। तो जब गवाही के अंदर दो अफराद की शर्त है तो इकरार के अंदर भी दो दफा का इकरार शर्त होगा, जबकि तरफैन फरमाते हैं नहीं, एक दफा का इकरार ही काफी है। तो कहते हैं वयजिबुल कत्उ बिइकरार ही मर्रतन वाहिदतन, और कता जो है वो वाजिब हो जाएगी उस चोर के एक ही मर्तबा के इकरार से। वहादा इंदा अबी हनीफत व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और ये तरफैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला ला युक्तउ इल्ला बिल इकरार मर्रतैन, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हाथ नहीं काटा जाएगा मगर दो मर्तबा के इकरार से। वयुरवा عنه انهما في مجلسين مختلفين, और यह भी रिवायत किया गया है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से कि انهما في مجلسين مختلفين, कि यह दो इकरार दो मुख्तलिफ मजलिसों में होने चाहिए। जैसे जिना के अंदर हर इकरार के अंदर इकरार करने वाले की अलग मजलिस शर्त थी, तो यहां पर भी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अलग अलग मजलिस होनी चाहिए हर इकरार के लिए। तो कहते हैं वयूर वाहू, और इमाम अबू यूसुफ रमाला से रिवायत किया गया है कि अन्नहुमा फी मजलिसैनी मुख्तलिफैनी, कि ये दोनों इकरार दो मुख्तलिफ मजलिसों में होने चाहिए। लिअन्नहु इहदल हुज्जतैनी फतुअतबरु बिल उखरा वही अल बय्यिनतु, इसलिए क्योंकि वो फरमाते हैं कि इकरार दो हुज्जतों में से एक हुज्जत है। एक हुज्जत तो क्या है, दो गवाह यानी बय्यिना है, और एक क्या है, इकरार। तो लिहाजा इस इकरार को भी दूसरी हुज्जत यानी बय्यिना पर कियास किया जाएगा, और बय्यिना में तो दो गवाहों का होना जरूरी था, तो इकरार भी दो मरतबा होगा। तो वो फरमाते हैं लिअन्नहु इहदल हुज्जतैनी, इसलिए क्योंकि इकरार जो है वो दो हुज्जतों में से एक हुज्जत है। फतुअतबरु बिल उखरा, तो इसको दूसरी हुज्जत पर कियास किया जाएगा। वही अल बय्यिना, तो और वो दूसरी हुज्जत जो है बय्यिना है यानी गवाही है। कदालिका अतबरना फिर जीना, इसी तरह हमने कियास किया था जीना के अंदर। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं जीना में भी हमने इसी तरह चार गवाहियों पर इकरार को हमने कियास किया था कि गवाहियां चार हैं तो इकरार भी चार होने चाहिए। यह माना है कदालिका अतबरना फिर जीना, इसी तरह हमने कियास किया था जीना के मसले में। वलहुमा, अब तरफेन की दलील आ गई। तरफेन फरमाते नहीं एक ही दफा का इकरार काफी है भाई। वलहुमा और तरफेन की दलील यह है कि अन्नसरिकत कद ज़हरत बिल इकरारी मर्रतन, कि चोरी जो है वो तहकीक जाहिर हो गई एक ही दफा के इकरार से। जब चोर ने एक दफा कह दिया ये चोरी मैंने की है तो सरिका जाहिर हो गया। जब एक दफा इकरार से सरिका जाहिर हो गया तो अब मजीद किसी इकरार की जरूरत नहीं है। तो तरफेन फरमाते हैं अन्न सरिकत कद ज़हरत बिल इकरारी मर्रतन, के तहकीक चोरी एक दफा के इकरार से जाहिर हो गई। फयुक्तफा बिही, तो इसी एक इकरार पर ही इक्तफा कर लिया जाएगा। कमा फिल किसास व हद कज़फी, जैसे कि किसास और हद कज़फ के अंदर है। हालांकि किसास जो है किसास वो भी अदना शुबे से साकित हो जाता है, हद कज़फ, हद कज़फ भी हद का मामला है, वो भी अदना शुबे से साकित हो जाती है। लेकिन वहां पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह भी मानते हैं कि किसास के अंदर एक दफा इकरार काफी है, इसी तरह हद कज़फ के अंदर भी एक दफा इकरार काफी है भाई। तो उस तरफेन की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं जैसे किसास और हद कज़फ में एक दफा इकरार काफी है, तो यहां सरिका में भी एक दफा इकरार काफी है, क्योंकि एक दफा के इकरार से ही चोरी जाहिर हो चुकी है, चोर का पता चल चुका है भाई। तो कहते हैं फयुक्तफा बिही, तो एक दफा के इकरार पर ही इक्तफा किया जाएगा। कमा फिल किसास व हद कज़फ, जैसे कि किसास और हद कज़फ के अंदर है। वला अतबार बिश शहादती, हां यहां से अब जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कियास का। उन्होंने इकरार को कियास किया था बय्यिना पर, यानी एक हुज्जत को कियास किया था दूसरी हुज्जत पर, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप इकरार को बय्यिना पर कियास नहीं कर सकते। वजह यह है कि गवाही के अंदर अफराद जूं जूं बढ़ते जाएंगे वहां झूठ का इल्जाम खत्म होता चला जाएगा, लेकिन इकरार के अंदर तो झूठ का इल्जाम नहीं होता। कोई शख्स अपने नुकसान का एतराफ तो नहीं करता, लिहाजा गवाही पर आप इकरार को कियास नहीं कर सकते। कहते हैं वला अतबार अभी शहादती, और गवाही पर कियास नहीं किया जाएगा। लिअन्न ज़ियादत तुफीदु फीहा, इसलिए क्योंकि गवाही के अंदर जायद होना यह फायदा देता है तकलील तोहमतिल कज़िब, झूठ के इल्जाम के कम करने का। गवाही के अंदर जो जो अफराद बढ़ते जाएंगे झूठ का इल्जाम कम होता चला जाएगा। तो कहते हैं लिअन्न ज़ियादत तुफीदु फीहा, इसलिए क्योंकि गवाही के अंदर ज्यादती जो है वो फायदा देती है तकलील तोहमतिल कज़िब, झूठ के इल्जाम के कम करने का। वला तुफीदु फिल इकरारी शैआ, और ज्यादती जो है इकरार के अंदर किसी चीज का फायदा नहीं देती। कोई एक दफा इकरार करे या दस दफा इकरार करे, बात तो एक ही है, एक दफा इकरार से भी चीज जाहिर हो गई, दस दफा से भी चीज जाहिर हो गई, वहां पर कोई झूठ का इल्जाम नहीं है भाई। तो कहते हैं वला तुफीदु फिल इकरारी शैआ, और इकरार के अंदर ज्यादती किसी चीज का फायदा नहीं देती। लिअन्नहु ला तुहमता, इसलिए क्योंकि इकरार के अंदर किसी किस्म का इल्जाम नहीं होता। वबाबु रुजू फी हकिल हद ला यंसद्दु बितकरारी, व रुजू फी हकिल माल ला यसिहु असला, तरफैन की दलील चल रही है। तरफैन फरमाते हैं कि एक शख्स ने चोरी का इकरार किया है, तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है चोरी की हद लगाई जाएगी, इस आदमी को चोरी की हद लगाई जाएगी, इसका हाथ काटा जाएगा, और दूसरा यह कि इसको वो माल भी देना पड़ेगा अगर वो माल इसके पास मौजूद है। अगर वो माल इसके पास हलाक हो गया है फिर तो इस पर जमान नहीं आएगा, लेकिन अगर वो माल इसके पास मौजूद है तो वो माल भी देना पड़ेगा। तो लिहाजा चोर के इकरार की वजह से दो चीजें आ रही हैं, एक तो उस पर हद सरिका आ रही है और दूसरा माल आ रहा है। तो अब अगर ये इकरार चाहे एक दफा करे चाहे दस दफा करे, हद के मामले में इसका रुजू मोतबर है। जब भी ये रुजू करे चाहे दस दफा इकरार के बाद भी रुजू करेगा तो हद सरिका साकित हो जाएगी और जो माल है वो साकित नहीं होगा। चाहे एक दफा ही इकरार क्यों ना किया हो, माल ही साकित होगा, माल इसको देना पड़ेगा क्योंकि माल का मालिक इसको झुटला रहा है भाई। तो हासिल कलाम यह कि चोरी के मामले में दो चीजें थी, एक हद सरीका था और एक माल था। हद सरीका के अंदर जितनी दफा भी इकरार कर ले, रुजू का दरवाजा बंद नहीं होता, फिर भी वो रुजू कर सकता है और हद साकित हो जाएगी। और माल जो है, माल के मसले में एक दफा का भी इकरार काफी है और वो उसके बाद रुजू करना चाहे तो रुजू नहीं कर सकता। लिहाजा यहां ज्यादा इकरार की शर्त लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ना हद के मामले में ना माल के मामले में। माल भी एक दफा के इकरार से साबित हो गया, वहां अब रुजू नहीं हो सकता, और हद जो है उसमें तो ज्यादा दफा इकरार कर भी ले फिर भी वहां रुजू का दरवाजा बंद नहीं होता। तो कहते हैं वबाब रुजू फी हक हद ला यंसद्दु बितकरारी, इन सद्दा यंसद्दु के माने हैं बंद होना। वबाब रुजू फी हक हद और हद के हक में, यानी हद के मामले में रुजू का जो दरवाजा है, ला यंसद्दु वो बंद नहीं होता, बितकरारी तकरार की वजह से, यानी जितनी दफा भी इकरार कर ले रुजू का दरवाजा हद के मामले में बंद नहीं होता। वर रुजू फी हक माल ला यसिहु असला, और माल के मामले में जो रुजू है ला यसिहु असला, वो तो कतई तौर पर सही ही नहीं है, वो तो सिरे से सही ही नहीं है, वो रुजू हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं वह रुजू फी हक माली, और माल के हक में, यानी माल के मामले में जो रुजू है ला यसिहु असला, वो सिरे से सही ही नहीं है। लिअन्न साहिबल माली युकद्दिबुहु, इसलिए क्योंकि माल का मालिक जो है वो इसको झुटला रहा है, ये रुजू करना चाहता है लेकिन वो झुटलाएगा कि नहीं मेरा माल इसी के पास है। तो कहते हैं लिअन्न साहिबल माल युकद्दिबुहु, इसलिए क्योंकि माल का मालिक जो है वो इसको झुटलाएगा। वश्तिरातु ज़ियादति फिज़्ज़िना बिखिलाफिल क़ियासी, यहां से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के क़ियास का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने इस चोरी के इकरार को कियास किया था जिना के अंदर, जिना के मसले पर, और जिना के अंदर गवाह चार थे तो इकरार भी चार मरतबा था, तो यहां गवाह दो है चोरी के मसले में तो इकरार भी दो दफा होना चाहिए। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप जिना के मसले पर इस चोरी के मसले को कियास नहीं कर सकते। वजह यह कि जिना के अंदर जो चार दफा इकरार साबित भी है वो खिलाफुल कियास नस से साबित है, हदीस से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने माइज रजी अल्लाह ताला अन्हो से चार अलग अलग मजलिसों के अंदर इकरार लिया, तो वो खिलाफुल कियास नस से साबित है। हमारी अकल में यह बात नहीं आती क्योंकि अकल तो यह कहती है कि इकरार एक दफा किया जाए या दस दफा किया जाए, बात तो एक ही है, क्योंकि जब एक दफा इकरार कर लिया बात तो जाहिर हो गई, फिर यह चार दफा इकरार क्यों करवाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, यह बात हमारी अकल में नहीं आती। और जो चीज खिलाफुल कियास हो, यानी जो चीज खिलाफुल अकल हो, उस पर दूसरी चीज को कियास नहीं किया जा सकता। तवज्जो है भाई, आप एक चीज को दूसरी चीज पर तब कियास करेंगे जब एक बात आपकी अकल में आ रही हो, जब एक चीज आपको समझ में आ रही हो। लेकिन यहां जिना के मसले में चार दफा इकरार की शर्त क्यों है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार दफा इकरार क्यों करवाया, हमारी अकल में यह बात समझ में नहीं आती। तो और तो मालूम हुआ यह हुक्म खिलाफुल कियास है, और जो हुक्म खिलाफुल कियास होता है वह अपने मौरिद पर बंद होता है, यानी जिस मसले में वो वारिद हुआ है, जिस मसले के अंदर वह हुक्म आया है, उसी के अंदर वह हुक्म बंद रहेगा, किसी और चीज को उस पर कियास नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वश्तरातु ज्यादति फिज जीना बिखिलाफिल कियासी, और जीना के अंदर ज्यादा इकरार की जो शर्त है वो खिलाफुल कियास है। फयक्तसिरु अला मौरिदि शरई, तो लिहाजा वो ज्यादा की शर्त बंद रहेगी शरीयत के मौरिद पर, यानी जिस चीज के बारे में शरीयत ने हुक्म दिया है उसी पर वो बंद रहेगी। तो ये माना है फयक्तसिरु अला मौरिदि शरई, तो वो ज्यादा की जो शर्त है वो शरीयत के मौरिद पर ही बंद रहेगी। आगे देखिए काल अवयजिबू भी शहादती शाहिदैनी, काल काला से मुराद है साहिब कुदूरी, काल अवयजिबू भी शहादती शाहिदैनी, साहिब कुदूरी फरमाते हैं कि हाथ का काटना वाजिब हो जाएगा दो गवाहों की गवाही से, यानी हद सरीका साबित हो जाएगी दो गवाहों की गवाही से। ली तहक्कुकी जुहूरी का माफी साइरिल हुकूकी, लितहक्कुकी जुहूरी, जुहूर पाए जाने की वजह से जब दो आदि गवाहों ने आकर गवाही दे दी तो अब चोरी का जुर्म जाहिर हो गया, चोरी का जुर्म जाहिर हो गया, चोर का पता चल गया। कहते हैं लितहक्कुकी जुहूरी, जुहूर के पाए जाने की वजह से, कमाफी साइरिल हुकूकी, जैसे कि बाकी हुकूक में होता है। वयम बगी अयस अलहुमल इमाम अन कैफियत सरिकती व माहियतिहा व जमानिहा व मकानिहा, भाई यहां से आपको बतला रहे हैं साहिब हिदाया के इमाम के पास अगर दो अफराद गवाही दें किसी के खिलाफ किसने चोरी की है तो इमाम फौरन हद का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यहां पर भी उन गवाहों से कुछ सवालात पूछेगा, किसी तरह कोशिश करे कि हद को टाल दिया जाए। जैसे जिना के मसले के अंदर जो भी गवाह आते थे उनसे इमाम पांच सवालात पूछता था, तो यहां भी इमाम जो है गवाहों से कुछ सवालात पूछेगा। इमाम उनसे पूछेगा चोरी की कैफियत के बारे में कि किस तरह इसने चोरी की, इसलिए क्योंकि आगे चलकर साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि बास चोरी की वो सूरतें हैं कि उनमें हाथ का काटना वाजिब नहीं होता। मसलन दो चोर आए और एक बाहर ही खड़ा रहा और एक घर के अंदर चला गया, और फिर घर के अंदर वाला चोर जो है वो सामान उठाकर खिड़की के जरिए या किसी सुराख के जरिए बाहर वाले चोर को पकड़ा रहा है, तो इस सूरत में किसी एक का भी हाथ नहीं काटा जाएगा। अंदर वाले का हाथ इसलिए नहीं काटा जाएगा कि वो सामान लेकर बाहर नहीं निकला, वो सामान लेकर बाहर नहीं निकला, उसने हिफाजत को नहीं तोड़ा, और नीज बाहर वाले का हाथ भी नहीं काटा जाएगा क्योंकि वो तो घर के अंदर ही नहीं गया, तो बाहर वाले ने भी हिफाजत को नहीं तोड़ा और अंदर वाले ने भी हिफाजत को नहीं तोड़ा, लिहाजा किसी का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो लिहाजा इमाम जो है वो गवाहों से पूछेगा उस चोरी की कैफियत के बारे में कि किस तरह इसने चोरी की थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो, ऐसी सूरत हो जिसमें हाथ का काटना वाजिब ही ना होता हो। भाई तो कहते हैं वयम बगी अयस अलहुमल इमाम, और मुनासिब यह है कि उन गवाहों से इमाम पूछे अन कैफियत सरकती, चोरी की कैफियत के बारे में कि इसने कैसे चोरी की, व माहियती हा, और नीज चोरी की माहियत के बारे में उन गवाहों से पूछेगा कि चोरी किसे कहते हैं ये तो बतलाओ भाई, इसलिए क्योंकि चोरी का खुफिया होना जरूरी है, पोशीदा तौर पर होना जरूरी है, और हो सकता है गवाहों के ख्याल में पोशीदा होना जरूरी ना हो भाई, ये छुप कर चीज नहीं ले गया, किसी के सामने ही चीज उठाकर ले गया हो तो फिर तो खुफिया तौर पर ना रहा भाई, तो लिहाजा चोरी की माहियत के बारे में भी उनसे पूछेगा भाई। और नीज फिर याद रखो जमाने के बारे में भी पूछेगा इमाम कि कब इसने चोरी की थी, कहीं ऐसा ना हो बात पुरानी हो चुकी हो, जैसे आप पढ़ चुके हैं जिना के मसले में भी कि अगर वो जिना जो है एक माह पुराना हो जाए तो हद साकित हो जाएगी, इसी तरह चोरी भी अगर एक माह पुरानी हो गई तो चोरी की हद साकित हो जाएगी। तो लिहाजा इमाम जमाने के बारे में भी पूछेगा और नीज जगह के बारे में भी पूछेगा कि किस जगह पर इसने चोरी की है, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो महफूज जगह ही ना हो जहां से इसने चोरी की है, मसलन जो चीज इसने चोरी की है वो घर के बाहर पड़ी हुई थी, जब घर के बाहर पड़ी हुई है वो चीज तो वहां तो हिफाजत नहीं है, तो जगह के बारे में भी पूछेगा। और नीज हो सकता है कहीं इसने दारुल हर्ब में ना चोरी की हो, और दारुल हर्ब की चोरी पर तो हाथ नहीं काटा जा सकता भाई, तो इमाम ये सवालात पूछेगा। तो कहते हैं मुनासिब यह है कि इमाम उनसे पूछे, उन गवाहों से पूछेगा अन कैफियत सरकती, चोरी की कैफियत के बारे में, व माहियतिहा, और चोरी की माहियत के बारे में कि चोरी किसे कहते हैं, व जमानिहा, और जमाने के बारे में कि इसने कब चोरी की, व मकानिहा, और जगह के बारे में कि कहां से इसने चोरी की। बात समझ में आ गई। इसी तरह यह भी पूछेगा इमाम कि क्या चीज चुराई इसने, इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई वो मामूली चीज हो और मामूली चीजों के अंदर हाथ नहीं काटा जाता। और नीस ये भी पूछेगा इमाम किससे चोरी की, इसलिए कि हो सकता है इसने किसी अपने महरम रिश्तेदार से चोरी की हो और महरम रिश्तेदार से चोरी की सूरत में भी हाथ नहीं काटा जा सकता। तो कहते हैं इमाम ये सारी चीजें पूछेगा ले ज्यादती ले एहतियाती, ज्यादा एहतियात के लिए, कमा मर्रा फिल हुदूदी, जैसे कि हुदूद के अंदर पीछे बात गुजर गई थी, वह भी सुहु इला अस अलानी शुहूदी ले तोहमती, और इमाम इस मुलजिम को कैद में डाल देगा इला अस अलानी शुहूदी, यहां तक कि वो गवाहों के बारे में पूछ ले तोहमती, इल्जाम की वजह से। भाई देखिए इस शख्स पर चोरी का इल्जाम लगा है, दो गवाहों ने गवाही दे दी है, तो अब फौरन काजी हाथ काटने का हुक्म नहीं देगा बल्कि यह हद का मामला है, लिहाजा इमाम जो है पहले गवाहों की तादील करवाएगा, पता करवाएगा कि यह गवाह आदिल भी हैं या नहीं, यह काबिल एतमाद भी हैं या नहीं। तो इस दौरान इस चोर को वह जेल में डाल दे क्योंकि इस पर चोरी का इल्जाम है, कहीं ऐसा ना हो यह भाग जाए। तो यह माना है वयह भी सुहू, और इमाम इसको कैद में डालेगा इला अयस अलानी शुहूदी, यहां तक कि गवाहों के बारे में पूछ ले, उस वक्त तक इमाम इसे कैद में डालेगा लित तोहमती, इल्जाम की वजह से कि इस पर चोरी का इल्जाम है। भाई आगे देखिए قال واذا اشترك جماعه في سرقه فاصاب كل واحد منهم 10 دراهم قطع। सूरत मसला यह कि कई अफराद ने मिलकर चोरी की है, एक जमात है पूरी जिसने मिलकर चोरी की है, तो क्या अब इन सब का हाथ काटा जाएगा या नहीं। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि वो चोरी किया हुआ माल इन पर तकसीम करके देखा जाएगा, अगर हर एक के हिस्से में 10 दिरहम आ रहे हैं तो फिर हर एक का हाथ काटा जाएगा, और अगर हर एक के हिस्से में 10 दिरहम नहीं आ रहे फिर इनका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदश्तर का जमात उन फी सरीकतिन, और जब एक जमात शरीक हुई चोरी के अंदर, फअसाब कुल्ल वाहिदिन मिनहुम 10 दराहिमा, फअसाब कुल्ल वाहिदिन, ये कुल्ल वाहिदिन को मंसूब पढ़ेंगे ये मफूल है, और आगे 10 दराहिम ये फाइल है असाब का, فأصاب كل واحد منهم, बस उनमें से हर एक को पहुंचे, 10 दराहिम 10 दिरहम, हर एक को हर एक के हिस्से में 10 दिरहम पहुंचे, कुतिया तो फिर हाथ काटा जाएगा हर एक का, वह इन असाबहु अकल्लु, और अगर उनमें से हर एक को 10 दिरहम से कम पहुंचा है, ला युक्ताउ फिर हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्नल मूजिबा सरिकतुन निसाबी, लिअन्नल मूजिबा इसलिए क्योंकि वो चीज जो हाथ काटने को वाजिब करती है, मुजिब से क्या मुराद है, मुजिब जो हद को वाजिब करने वाली चीज है, और हद कब वाजिब होती है, जब निसाब के बकदर चोरी की हो। तो कहते हैं लि अन्नल मूजिबा सरिकतुन निसाबी, इसलिए क्योंकि हद को वाजिब करने वाली चीज जो है वो निसाब की चोरी है, ويجب على كل واحد منهم بجنايته, और यह हाथ का काटना हर एक पर वाजिब होगा उसके जुर्म की वजह से, فيعتبر كمال النصاب في حقه, लिहाजा निसाब के पूरा होने का एतबार किया जाएगा, في حقه उनमें से हर एक के हक में, भाई हर एक का जो हाथ काटा जा रहा है वो उसके जुर्म की वजह से हाथ काटा जा रहा है, और जुर्म तभी पूरा होगा जब हर एक के हिस्से में 10 दिरहम आते हों। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह जिबू आला कुल्ल वाहिद मिनहुम भी जिनायती ही, और हर एक पर यह कता वाजिब होगी उसके जुर्म की वजह से, फयो अतबरू का मालुन निसाबी फी हक ही, लिहाजा निसाब के कामिल होने का एतबार किया जाएगा, फी हक ही उनमें से हर एक के हक में, उनमें से हर एक के हक में चोरी का निसाब कामिल होना चाहिए, फिर ही हर एक का हाथ काटा जाएगा। और नीस ये भी याद रखना, अगर चोरी करने वालों में कोई बच्चा है या मजनून है या मालिक वो जो जिसका माल चोरी किया है उसका कोई करीबी महरम रिश्तेदार है, तो बच्चा मजनून और करीबी महरम रिश्तेदार इनका तो हाथ नहीं काटा जाता, तो इनकी वजह से किसी और का भी हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई जब इनका हाथ नहीं काटा जा सकता तो फिर उन चोरों की जमात में से किसी और का भी हाथ नहीं काटा जा सकता। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।